Good morning. What are you telling me to go away?
Continue up to 10:30, you see.
Huh?
You can go up to 10:30.
I see, okay. Thank you for asking for the mobiles to be switched off.
Mobile band karne ke liye jo suchna di gayi iske liye dhanyawad.
The Telugu men, they love their mobiles. The Telugu men, the men in Andhra. They love mobiles. They phone each other in the meeting, I think.
Hamare Telugu bhai jo Andhra mein hai wo mobile se bahut prem karte hain. Meeting ke beech mein bhi andar hi ek dusre se baat karte rehte hain.
I said to them in one meeting, I said, now brethren, I need to speak to you about earrings, what the Bible says about earrings.
मैंने उनसे कहा कि भाइयों, मैं आपसे कान की बाली के बारे में बात करना चाहता हूं.
And we have earrings today, things that ring in the ear.
आज हमारे पास इस प्रकार की कान की बाली जहां पर कान में सुनाई देती है, earrings, कान में सुनाई देती है.
And the golden calf in Exodus 32 was made out of earrings.
और जो सोने का बछड़ा जो जो हम निर्गमन की पुस्तक में पढ़ते हैं वो कान की बाली से बनी हुई थी.
And Moses ground it all up and he made the people drink it.
और मूसा ने उन सबको पीस कर कूट कर लोगों को पिलाया.
So I said, brethren, if your phone goes off, I'm going to do the same. I'm going to grind it up and I'm going to make you drink it.
मैंने कहा उनसे कि ब्रदर अगर आपका फोन अगर बजेगा तो मैं इसे कूट कर पीस कर आपको पीना पड़ेगा वो.
For 15 minutes everything was fine.
15 मिनट तक सब कुछ ठीक था.
Suddenly.
अचानक.
And suddenly the crowd, maybe 2,000 of them, and they just went, woof, and they said, brother, it's him.
अचानक जो भीड़ है वो सब स्तब्ध रह गया. उन्होंने सब एक साथ चिल्लाकर कहा, ब्रदर इनका बजा है.
So, well, brethren, it's lovely to be able to open the Word of God with you again.
भाइयों, आपके साथ परमेश्वर के वचन से बात करने का जो अवसर मिला, ये बड़ा आनंद का हर्ष का समय है.
And we're going to read this morning in Daniel chapter 9 first.
और आज आरंभ में मैं दानियल की पुस्तक उसके 9वें अध्याय से पढ़ना चाहूंगा.
And if you would read, brother, please, from verse 21 to the end of the chapter in Daniel 9.
हम उसके 9वें अध्याय, दानियल की पुस्तक 9वें अध्याय 21वें पद से लेकर अंतिम पद तक देखेंगे. मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं. और जब मैं प्रार्थना कर ही रहा था और अत्यंत थका हुआ था, उसी समय वह पुरुष जिब्राइल, जिसे मैंने पहले दर्शन में देखा था, संध्या के बलिदान के समय मेरे पास पहुंचा. उसने मुझे समझाया, मुझसे बातें की और कहा, हे दानियल, मैं तुझे समझ के साथ बुद्धि देने आया हूं. जब तू अनुनय विनय करने लगा तभी आज्ञा दी गई और मैं तुझे बताने आया हूं, क्योंकि तू अत्यंत सम्मानित ठहरा है. इसलिए तू संदेश पर ध्यान दे और दर्शन को समझ ले. तेरी प्रजा और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध समाप्त हो, पाप बंद हो, अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, सनातन काल की धार्मिकता स्थापित हो, दर्शन की नबूवत मुहर बंद हो और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए. अतः तू समझ कर जान ले कि यरूशलेम के पुनर्निर्माण और बसाए जाने की आज्ञा निकलने से लेकर अभिषेक प्रदान के समय तक 7 सप्ताह और 62 सप्ताह होंगे. संकट के दिनों में चौक और खाई समेत वह नगर फिर से बसाया जाएगा और 62 सप्ताह के बाद वह अभिषेक घात कर दिया जाएगा और उसका कुछ न बचेगा. और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश कर डालेगी. उसका अंत बाढ़ से होगा और अंत तक भी लड़ाई होती रहेगी. उसका उजड़ जाना निश्चित है. एक सप्ताह के लिए तो वह बहुतों से दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु सप्ताह के बीच में वह मेलबलि और अन्न बलि को बंद कर देगा और घृणित वस्तु को शिखर पर वह उजाड़ने वाला तब तक दिखाई देगा जब तक ठहराया हुआ विनाश उस पर पूरा पूरा ना पड़ जाए.
थैंक यू एंड वी ट्रस्ट द लॉर्ड विल ब्लेस दैट रीडिंग. वी विल जस्ट रीड वन मोर इन द एंड ऑफ द सेकंड बुक ऑफ क्रॉनिकल्स.
दूसरे इतिहास में से एक भाग को और देखेंगे.
द लास्ट चैप्टर, चैप्टर 36.
दूसरा इतिहास उसका 36वां अध्याय.
एंड And we will read, please, from verse 19 to the end of 2 Chronicles 36.
इतिहास की दूसरी पुस्तक 36वें अध्याय के 19वें पद से लेकर अंत तक हम पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। तब उन्होंने परमेश्वर के भवन को जला दिया और यरूशलेम की शहरपनाह को ढा दिया था तथा उसके सब दृढ़ गढ़ों को आग लगाकर फूंक दिया और उसके सब बहुमूल्य सामान को नष्ट कर दिया और जो तलवार से बच गए थे उन्हें वह बेबीलोन ले गया। वहां वे तब तक उसके और उसकी संतान के दास बने रहे जब तक कि फारस का राज्य स्थापित ना हो गया। यह इसलिए हुआ कि यहोवा का यह वचन जो यर्मिया नबी के मुंह से निकला था पूरा हो, अर्थात देश अपने विश्राम का सुख प्राप्त कर ले। अतः जब तक कि 70 वर्ष पूरे ना हुए देश उजाड़ पड़ा रहा और उसे सब्त का विश्राम मिला। और फारस के राजा कुसरू के राज्य के प्रथम वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुसरू के मन को उभारा कि यहोवा का जो वचन यर्मिया के मुंह से निकला था वह पूरा हो। अतः उसे अपने समस्त राज्य में इस प्रकार घोषणा करवाई और उसे लिखवाया भी। फारस का राजा कुसरू जो कहता है स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी के समस्त राज्य मुझे दिए हैं और उसने मुझे नियुक्त किया है कि मैं यहूदा के यरूशलेम में उसके लिए एक भवन बनाऊं। उसकी सारी प्रजा से जो कोई तुम्हारे मध्य हो उसका परमेश्वर यहोवा उसके साथ रहे और वह वहां चला जाए।
Thank you, dear brother. It might be useful if we put this particular chart on the screen as well, please. Thank you, Godley. That's the that one there. 490 years, it's probably called. That's it. Thank you, brother. Very good.
And last day.
Thank you. Before we go into the detail of the 70 weeks, there's one or two things in the readings we've had that we should notice.
70 सप्ताह की जो अध्ययन है उसमें जाने के पहले कुछ बातें हमने जो भाग पढ़ा उसमें से देखेंगे।
Again, they are practical things that we should know as brethren and as leaders amongst the Lord's people.
यहाँ कुछ प्रायोगिक बात हैं जो हमें कलीसिया के अगुए होने के कारण जानना जरूरी है।
We know that the book of Daniel is a very full book.
हम जानते हैं कि दानियल का जो पुस्तक है संपूर्ण रूप से पूर्ण हुआ एक पुस्तक है।
For example, this whole central theme of the 70 weeks is condensed really into just a couple of verses.
वास्तविक रूप से देखें तो ये जो 70 सप्ताह का पूरा अध्ययन है कुछ पदों में ही दिया गया है।
And it is often being described as the very backbone of prophecy.
और वास्तविक रूप से ये जो भाग है इसको कलीस जो भविष्यवाणी उसकी रीढ़ की हड्डी के रूप में कहा जाता है।
You don't understand this, you don't understand the prophetic program.
अगर हम इस सत्य को अच्छे से समझेंगे नहीं भविष्यवाणी की अन्य बातों को समझ नहीं पाएंगे।
And the truth of it is condensed into just a few verses.
और ये सच्चाई कुछ पदों में सीमित हो गई है।
So if I said to you, what is Daniel chapter 9 about?
अगर मैं आपसे कहूंगा कि दानियल उसका 9वां अध्याय किस बात को बता रही है?
You would say Daniel 70 weeks.
आप कहेंगे कि दानियल के 70 सप्ताह हम देखते हैं।
But maybe we forget that from verse 4 to verse 19.
लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पद 4 से लेकर पद 19 तक
the largest part of the chapter,
जो उस अध्याय का सबसे बड़ा भाग है,
it is about a man pleading with God.
यहां पर एक व्यक्ति परमेश्वर से विनती कर रहा है।
He's praying.
वो प्रार्थना कर रहा है।
Because this man Daniel, who from young years has grown up in Babylonian captivity.
क्योंकि यह पुरुष दानियल बहुत ही छोटे उम्र से बेबीलोन में गुलाम के रूप में रह रहा है, बाबुल में।
As it becomes apparent to him that the God of heaven has chosen to use him to reveal truth.
और धीरे-धीरे उसको यह व्यक्त हो गया कि स्वर्ग का परमेश्वर ने कुछ सत्यों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए उसे चुना है।
More and more he's feeling the weight of it.
और जब उसका ज्ञान हुआ तो उसका उसके बोझ बढ़ता गया।
And when it came to the revelation to Daniel of this program that God has spanning these 70 weeks of years,
और दानियल के जीवन में जब इस 70 सप्ताह में परमेश्वर क्या की क्या योजना है ये प्रकट हो गया,
It was while he was speaking and praying and confessing his sin that Gabriel came and spoke to him.
और हम जानते हैं जब वो प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से विनती कर रहा था और रो रहा था तब गब्रियल उससे बात करने आया.
Now brethren, this is an important lesson we've got to take away from this week.
प्रिय भाइयों, इस अध्ययन में से एक महत्वपूर्ण भाग जो हमें सीखना वो यही है.
Because we almost can get to the stage where we are thinking in technical terms about this prophetic program.
कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जब हम परमेश्वर के इस भविष्य की बातों के बारे में कई रूप से एक तकनीकी रूप से उसको देखते हैं.
Later we will be thinking in the will of the Lord about the unfolding of God's judgment upon this world.
और बाद में कुछ दिनों के बाद कुछ पलों के बाद हम देखेंगे परमेश्वर का न्याय किस प्रकार पृथ्वी पर आ रही है.
And brethren calmly discuss together whether this judgment comes before that judgment and so on.
और भाई लोग आपस में ये विचार विमर्श करते हैं कि ये न्याय पहले गिरेगा ये न्याय पहले गिरेगा.
And they seem to forget that under that judgment, there will be men and women, and some of them we know.
और हम इस बात को भूल जाते हैं कि वो न्याय जब लोगों के ऊपर गिरेगा उसमें स्त्री और पुरुष सम्मिलित हैं और हो सकता है उनमें से कुछ वो हैं जिनको हम जानते हैं.
Daniel was a young man who, as he had grown up in Babylon, was wondering why has this happened to God's people?
दानियल एक जवान पुरुष था जब वो बबूल में बढ़ रहा था उसके मन में हमेशा ये विषय आ रहा था परमेश्वर ने अपनी प्रजा के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया.
And it was as he was reading the words of Jeremiah the prophet.
और जब वो यरमिया नबी की पुस्तक को पढ़ रहा था.
So he came to understand that God had got a program for his people and he, Daniel, was in the middle of it.
तब ये सत्य उसके सामने प्रकट हो गया कि परमेश्वर के अपने लोगों के लिए एक योजना है और इस योजना के बीच में दानियल खड़ा है.
God was working out sovereign divine purpose and Daniel was caught up in the whole thing.
और परमेश्वर अपने ईश्वरीय ज्ञान में एक बहुत बड़ी योजना को क्रियान्वयन कर रहा था और दानियल ने पाया वो उस योजना के बीच में आया.
And the realization of that made that dear man fall upon his knees.
और जब ये सत्य उसको प्रकट हो गया तो वो और परमेश्वर के करीब पहुंच गया.
It is interesting to note that some of the greatest men in scripture.
आप अगर देखेंगे तो पाएंगे कि पवित्र शास्त्र बाइबल में कुछ जो महान व्यक्तित्व है.
Men round about this time, Isaiah, Nehemiah, Ezra, Daniel.
जो लोग इस युग के आसपास थे यशायाह यरमिया नहमायाह दानियल.
These are men we know prayed unto their God and at the same time they took their place in an ungodly nation.
ये वो पुरुष थे जो प्रार्थना में परमेश्वर से निरंतर संपर्क में थे साथ ही उस परमेश्वर को नहीं मानने वाली उस भीड़ के बीच में परमेश्वर ने जो स्थान दिया था उसको उन्होंने ग्रहण करके काम किया.
Isaiah had that tremendous vision of the millennial glory of the Lord in Isaiah chapter 6.
यशायाह नबी के छठवें अध्याय में यशायाह ने प्रभु यीशु मसीह के उस हजार बरस के राज्य में प्रभु की जो महिमा को उसने देखा.
Did it make him walk around saying, I have knowledge that no one else has got?
और क्या उसने इस प्रकार से कहा मेरे पास काफी ज्ञान हो गया है जो दूसरों के पास नहीं है.
I must be a godly man for the Lord has revealed this to me.
मैं निश्चित रूप से एक पवित्र व्यक्ति हूं इसलिए परमेश्वर ने यह दर्शन मुझे दिया है.
No, he fell on his knees and he said, Depart from me, O Lord.
उसने ऐसा नहीं किया वो प्रभु के सामने गिर गया और कहा हाय मुझ पर.
For I am a man of unclean lips.
क्योंकि मैं कलंकित होठों से भरा हुआ मनुष्य हूं.
I dwell among a people of unclean lips.
मैं बुराइयों से भरे हुए लोगों के बीच में रहता हूं.
These men recognized they were part of a nation that had turned its back upon God.
इन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि वो उस देश के उस प्रजा के भाग हैं जिन्होंने परमेश्वर के जो विरोध में हो लिया है.
You don't find them praying and saying, "Oh God, have mercy on your people because they have sinned."
हम कहीं भी नहीं पाते उन्होंने प्रार्थना किया हे प्रभु अपने लोगों के ऊपर अपनी करुणा को दिखा क्योंकि उन्होंने पाप किया है.
These men of God are praying and they're saying, "Oh God, have mercy upon your people for we have sinned."
ये पुरुष जितने हैं उन्होंने हमेशा ऐसी प्रार्थना किया हे प्रभु ये जो तेरी प्रजा है इनके ऊपर दया दिखा क्योंकि हमने पाप किया है.
From verses 4 to 19 you can read that prayer of Daniel.
अध्याय 9 के 4 से लेकर 19 तक दानियल के इसी प्रार्थना को हम पढ़ते हैं.
He's speaking to God about the rebellious history of the nation of Israel.
वो परमेश्वर के सामने इसराइल ने परमेश्वर से जो बगावत किया उसके बारे में उसने प्रार्थना किया.
He is saying to God that God is perfectly righteous and just in judging His people.
वो परमेश्वर से इस प्रकार से कहता है, हे परमेश्वर, आप न्यायी हैं, आप जो कुछ भी अपने लोगों के ऊपर कर रहे हैं, वो न्याय संगत है.
He acknowledges God for who He is.
वो परमेश्वर कौन है, इस बात को समझते हुए उसकी महिमा करता है.
In that sense, He is justifying God.
वास्तविक रूप से जब वो ऐसा करता है, वो ये परमेश्वर को धर्मी ठहरा रहा है.
But he's crying for mercy.
और वो अपने ऊपर दया दिखाने के लिए प्रार्थना करता है.
Confessing that these people have sinned time and time again.
और वो बार बार पश्चाताप करता है, प्रभु मेरी प्रजा ने आपके विरुद्ध में पाप किया है.
And in verse 20 he said, and while I was speaking and praying and confessing my sin.
और पर 20 में कहता है, जब मैं कहते हुए प्रार्थना कर रहा था और अपने तथा अपनी इस्राएल जाति के पापों को अंगीकार कर रहा था.
एंड द सिन ऑफ माई पीपल इसराइल.
वो कहता है अपनी इसराइली जाति के पापों को भी.
While this godly man was praying like this, the Lord spoke to him.
जब ये ईश्वरीय पुरुष परमेश्वर भक्त प्रभु के सामने प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने उससे बातें की.
Brethren, do you have a burden for my people, your people?
भाइयों, आपके मन में अपने लोगों के लिए एक बोझ है?
This is a feature of a godly man.
ये एक भक्त की विशेषता है.
He doesn't set himself apart from the rest.
वो एक भक्त कभी भी अपने आप को बाकी जितने लोग हैं उनसे अलग नहीं रखता.
But he recognizes that we are not the people we should be.
लेकिन वो इस बात से अपने का महसूस करता है कि हम जो लोग होना चाहिए वो हम नहीं है.
And before God, he prays and he pleads for his brethren who are not praying for themselves.
और वो परमेश्वर के सामने वो विनती करता है, गिड़गिड़ाता है अपने भाइयों के लिए जो अपने लिए ही प्रार्थना नहीं कर रहे.
Do we know anything about it?
क्या हम इसके बारे में जानते हैं?
Very easy to criticize, isn't it?
कई बार दूसरों की निंदा करना, बुराई बोलना बहुत आसान है.
Very easy to lament the fact that perhaps in the state that you come from that the work is not going as it should.
कई बार हम इस प्रकार से सोच सकते हैं और बोल सकते हैं कि मैं जहां से आ रहा हूं हमारे यहां तो कुछ काम नहीं हो रहा.
Different men are looking for position.
कई लोग उच्च स्थान की खोज में लगे हुए हैं.
Others won't be obedient to the word of God.
और वो परमेश्वर के आज्ञा के अधीन नहीं कर रहे हैं.
And the great temptation, and to be honest, what often happens,
और जो सबसे बड़ी परीक्षा जो हमारे सामने आती है,
is that we stand back and we say, well, my ministry is okay.
कि हम थोड़ा हट जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं जो सेवकाई कर रहा हूं बहुत बढ़िया चल रहा है.
The assembly I am with, it is okay.
जो कलीसिया में मैं हूं वो तो बहुत बढ़िया चल रहा है.
And there's a pride begins to develop.
और हमारे मन में एक प्रकार का अहंकार उठने लगता है.
There is one body.
एक ही शरीर है.
That body, the body of Christ, is expressed locally in different assemblies.
और वो प्रभु यीशु मसीह का शरीर का स्पष्ट रूप से हम कई कलीसियाओं में उसका प्रदर्शन को देख सकते हैं.
If there is one body,
अगर एक ही शरीर है,
then you are my people.
तब तुम मेरी प्रजा हो.
In the sense that Daniel was speaking.
और यही संदर्भ में दानियल हमसे बातें कर रहा है.
Of course they were God's people, Israel.
निश्चित रूप से वो परमेश्वर की प्रजा इज़राइल.
He said, I was confessing my sin and the sin of my people, Israel.
कहता है कि मैं अपने पापों को और अपनी प्रजा इज़राइल के पापों को अंगीकार कर रहा था.
So the assemblies in a country you have never visited.
तो उन जगहों की कलीसियां जहां पर आप अभी तक गए नहीं है.
बिलीवर्स ऑफ डिफरेंट टंग एंड कलर एंड रेस एंड बैकग्राउंड.
और यहां पर विश्वासियों के अलग अलग भाषाएं हैं, जाति हैं, रंग हैं.
योर पीपल.
लेकिन वो आपके ही लोग हैं.
डैनियल रेकग्नाइज द यूनिटी ऑफ गॉड्स पीपल.
दानियल ने परमेश्वर के लोगों में जो एकता की आवश्यकता उसको समझा.
He was a most godly man. We know that right through this book.
हम जानते हैं दानियल के बारे में पूरी पुस्तक को पढ़े तो वो एक धर्मी भक्त पुरुष था.
But he felt the weight of the people's sin and departure from God.
लेकिन उसके ऊपर लोगों के पापों का बोझ और परमेश्वर से वो कितना दूर हो गए ये इसका दबाव इस बोझ का दबाव बहुत था.
And humbly he identified himself with those people.
और उसने अपने आप को नम्र किया और अपनी प्रजा के साथ अपने आप को कर दिया.
And the nation of Israel has got great cause to thank God for Daniel.
और मैं विश्वास करता हूँ इसराइल जी की जो प्रजा है दानियल को कितना भी धन्यवाद दे वो कम है.
And for Nehemiah, and for Ezra, and for Isaiah.
ऐसा ही यर्मिया, एशिया और इशाया नहमाया के लिए.
Because these were men who were praying for God's people when God's people were not praying for themselves.
क्योंकि ये वो पुरुष हैं जो परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे जब परमेश्वर के लोग अपने लिए ही प्रार्थना नहीं कर रहे थे.
And so we are right in this session to be looking at the 70 weeks.
इसलिए आज जब हम 70 सप्ताह के अध्ययन कर रहे हैं ये एक उचित समय है.
But I don't want you brethren to miss the background to this.
इसलिए भाइयों मैं नहीं चाहता कि आप इसकी पृष्ठभूमि को भुला दें.
For this truth was first revealed and handled by a man of God and a man of prayer.
और क्योंकि इस सत्य को सबसे पहले एक प्रार्थना पुरुष एक परमेश्वर के भक्त ने सबसे पहले इसको लिखा था.
And we should be challenged in our own hearts that as God through the Spirit is revealing this truth to us too.
कि हम इस बात को लेकर उत्साहित हो जाए आनंदित हो जाए कि परमेश्वर इस सत्य को हमें भी बताने जा रहा है.
Are we of the right spiritual character to handle it?
क्या हमारी आत्मिक और जो नैतिक जो मनोभाव है वो सही है आज जब हम इस बात को सीख रहे हैं.
You see, if this is purely a technical subject to us,
देखिए मैं बताऊंगा कि अगर ये जो विषय सिर्फ एक तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए है,
we will think about a time when terrible, terrible judgments pour out upon this world.
तो हम उस समय के बारे में सोचेंगे जब इस पृथ्वी पर बड़े-बड़े न्याय गिरेंगे.
Some brethren can speak about these things impassionately. They don't seem to touch them.
कई भाई इस विषय को बिना किसी संवेदन के बोलते हैं.
My friends, my neighbors at home,
मेरे जो मित्र और जो पड़ोसी हैं घर वहां वापस गांव में,
colleagues I once worked with,
और मित्र जिनके साथ मैं काम करता हूं,
people I know in the town,
जो लोग जिनसे मैं मिलता रहता हूं,
I know that the Lord is coming soon and I'm going to be taken to heaven.
मुझे मालूम है कि मेरा प्रभु आने वाला है और मैं स्वर्ग में उठा लिया जाऊंगा.
I know that that will trigger a chain of events that is the outpouring of divine wrath upon a godless world.
मुझे यह स्पष्ट रूप से मालूम है कि जब मैं उठा लिया जाऊंगा परमेश्वर का भयंकर क्रोध के कटोरे इस पृथ्वी पर गिरेंगे.
Those people I count as my friends and my neighbors,
जिनको मैं अपना मित्र अपने पड़ोसी होकर समझता हूं,
if they are not saved,
अगर वो उद्धार में नहीं आए,
they are going to come under that judgment.
ये सारे लोग उस न्याय के अधीन आ जाएंगे.
Does that drive me to my knees?
क्या ये मुझे घुटनों पे नहीं ले आएगी?
Does that quieten and humble my heart before God and cause me to worship Him that He saved me?
क्या ये मुझे प्रभु के सामने अपने आप को नम्र कर उसकी आराधना करने के लिए बाध्य नहीं कर देगा कि प्रभु तूने अपनी दया के द्वारा मुझे उद्धार दिया है?
And when I look at the careless way in which so many believers are living in these closing days,
और जब मैं देखता हूं कई विश्वासी ऐसे ही अपनी जिंदगी को बिना ध्यान दिए संसार में बिता रहे हैं,
does it cause me to fall on my knees and with tears confess my sin and the sins of my people?
क्या जब मैं विश्वासियों को ऐसा देखता हूं अगुवे के रूप में प्रभु के सामने गिरकर अपने पापों को और अपने प्रियजनों के पापों के लिए पश्चाताप करता हूं अंगीकार करता हूं?
Do you know what will make a massive difference to the work of the Lord in Maharashtra?
आपको मालूम है महाराष्ट्र में प्रभु के काम में एक बहुत बड़ा बड़ी बदलाव क्या ला सकता है?
It will not be if you can go back to your assemblies and tell them all about the 70 weeks.
ये नहीं कि आप अपनी कलीसियाओं में जाकर 70 सप्ताह के बारे में उनको एक बड़ी शिक्षा दे दें.
But if you go back to your home assemblies,
लेकिन अगर आप अपने स्थानीय कलीसियाओं में वापस जाएंगे,
as man of prayer,
एक प्रार्थना पुरुष के रूप में,
men who are praying and beseeching God for His mercy upon a people who are not what they should be.
ऐसे पुरुष जो प्रभु के सामने गिरकर निरंतर परमेश्वर से इसकी दया के लिए अपने प्रजा के ऊपर और अपने ऊपर दया के लिए जो विनती करेंगे.
That's the true value of Daniel chapter 9.
यही है दानियल उसके 9वें अध्याय का मूल सत्य या बहुमूल्य बात.
What did Daniel later say?
दानियल ने बाद में कहा क्या कहा?
The people that know their God. shall be strong and do exploits.
जो लोग अपने परमेश्वर को अच्छे से जानते हैं वो बड़े बड़े पराक्रम के काम को करेंगे.
It is excellent. We thank God for this prophecy conference.
हम धन्यवाद देते हैं इस प्रोफेसी के कॉन्फ्रेंस के लिए, बहुत बढ़िया हो रहा है.
But let's get it in its right place.
लेकिन हम उसको उसके सही स्थान पर रखें.
These things being handled by men who are conscious of the weight of the things they are dealing with.
ये जो विषय को जो लोग सिखाते हैं वो उसकी गंभीरता को समझकर उसे सिखाएं.
The majority of Daniel 9 is not about the 70 weeks.
और जो दानियल की बाकी पुस्तक में कहीं भी ये 70 सप्ताह के बारे में नहीं कहा गया.
It's about a man on his knees.
ये उस पुरुष के साथ हुआ है जो घुटनों पर बैठा हुआ है.
Crying to God for mercy upon his people.
जो प्रभु से अपने लोगों के ऊपर दया दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहा है.
God help us to be men like Daniel.
परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इस क्षण ऐसे पुरुष बन जाएं.
There is another important point that we need to pull out of this passage.
एक और बहुमूल्य सत्य है जो इस भाग से निकालना आवश्यक है.
Would you note, please, as you look at Daniel chapter 9?
आप जब दानियल के नौवे अध्याय को देखेंगे,
in verse 26,
पद 26 को देखिए.
You can read through verse 26 for yourself.
पद 26 को आप अपने आप जहां बैठे वहां पढ़िए.
And it finishes, and unto the end of the war, desolations are determined.
उसके बाद हम जानते हैं वो उजाड़ने वाला तथा घृणित वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं.
Verse 27, and he shall confirm the covenant with many for 1 week.
और हम पढ़ते एक सप्ताह के लिए तो वो बहुतों से दृढ़ वाचा बांधेगा.
Daniel was a tremendous man of God.
दानियल परमेश्वर के लिए एक सामर्थी पुरुष था.
Daniel was a man in touch with God.
दानियल एक पुरुष था जो परमेश्वर के साथ संबंध में था.
Daniel was a man to whom God revealed things he'd never revealed to anyone before.
दानियल वो पुरुष था जिसको परमेश्वर ने कई ऐसे बातों को प्रकट किया जिसे उसने किसी और से नहीं किया था.
But there's something about Daniel chapter 9 that you know that Daniel didn't.
लेकिन दानियल उसके नौवे अध्याय में कुछ ऐसी बात है जिसको आप जानते हैं लेकिन दानियल को नहीं मालूम था.
There is something in Daniel 9 that God didn't reveal to him that he's revealed to you.
दानियल उसके नौवे अध्याय में एक ऐसी बात भी है जिसको परमेश्वर ने आपको बताया लेकिन दानियल को नहीं बताया.
And it's this.
क्या है वो?
Between verse 26 and 27.
पर 26 और 27 के बीच में
there is a gap of 2000 years.
उन दोनों के बीच में 2000 बरस का अंतर है.
Because he speaks of the fact in verse 26 that Messiah will be cut off.
और 26वें पद में वो मसीहा के मृत्यु के या उजड़ जाने के बारे में बताता है.
The final rejection by the nation of the Lord Jesus 5 days before they crucified him.
और प्रभु यीशु मसीह के जो राज्य का जो सूचना है 5 दिन पहले जब वो उसे क्रूस पर चढ़ाए थे.
And then verse number 27.
पद 27 में
it's not speaking about the Lord coming to Calvary, as verse 26 does.
जैसे पद 26 में प्रभु यीशु मसीह कालवरी पर चढ़ने वाले उसके बारे में नहीं कहा गया है.
Verse 27 is speaking about events still future.
और पद 27 में भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में कहा गया है.
And if you were just simply reading through from verse 26 to 27, you would never for one moment realize that there was a gap between the two verses.
अगर हम 26 के बाद 27 को पढ़ेंगे तो हम में से कोई भी महसूस नहीं कर पाएगा कि वहां पर एक दूरी है या एक गैप है.
I don't know what kind of pen Daniel was using.
मुझे नहीं मालूम दानियल के पास किस प्रकार का पेन था.
But whatever kind of pen it was,
लेकिन किसी भी प्रकार का पेन क्यों ना हो,
as he was writing, he didn't hesitate between verse 26 and 27.
हम पढ़ते हैं कि जब वो 26 के बाद 27वें पद को लिख रहा था उसमें कोई रुकावट नहीं आई है.
His pen passed over a period of 2000 years and he didn't know it.
उसका जो पेन है 2000 बरस को पार कर गया लेकिन उसे पता ही नहीं चला.
Isaiah was a great man of prayer.
Isaiah बहुत प्रार्थना पुरुष था.
The Lord revealed things to Isaiah he had never revealed to anyone else.
प्रभु ने यशायाह नबी के सामने ऐसे सत्यों को प्रकट किया जिसके बारे में वो जानता नहीं था.
But the Lord hid things from Isaiah that he's revealed to you.
लेकिन परमेश्वर ने यशायाह नबी से बहुत सी बातों को छिपा के रखा जो उसने आपको प्रकट किया है.
You think about Isaiah chapter 9 and verse 6.
अगर हम यशायाह नबी की पुस्तक उसके 9वें अध्याय उसके 6वें पद को देखते हैं.
For unto us a child is born.
वहां लिखा हुआ है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है.
Unto us a son is given.
हमारे लिए एक पुत्र दिया गया है.
And the government shall be upon his shoulders.
और शासन उसके कंधों पर होगा.
And the pen of Isaiah never hesitated.
और यशायाह नबी का पेन वहां रुकता नहीं है.
But he's just crossed 2000 years.
लेकिन वो 2000 बरस पार कर गया.
Unto us a child is born. Unto us a son is given.
हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ. हमारे लिए एक पुत्र दिया गया है.
That's the first advent of Christ.
वो प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन के बारे में है.
And the government shall be upon his shoulder.
और शासन उसके कंधों पर होगा, सर अधिकार उसके कंधों पर होगा.
That's the second advent of Christ.
वो प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में कहा गया है.
And the Old Testament scriptures are full of passages like that.
और पुराने नियम के भागों को अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार के कई भाग हम पा सकते हैं.
Because these men never knew that there was going to be a period of time that we call the church age.
क्योंकि ये पुरुष उस समय के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे, कलीसिया का युग.
They just didn't know it. God hadn't revealed it to them.
उनको उसके बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं था क्योंकि परमेश्वर ने यह सत्य उनको प्रकट नहीं किया.
We who know about it can go back to the Old Testament now and we can say, yes, there's the gap in that verse, there's the gap in that verse.
हम जो इस सत्य को अभी जानते हैं, पुराने नियम के भागों को पढ़ते हैं, तो हम कहेंगे हाँ, यहाँ पर इस पद और इस पद के बीच में एक गैप है, एक दूरी है.
This is the definition of a mystery. In the New Testament.
ये नए नियम में जो एक मर्म है उसकी परिभाषा है.
A New Testament mystery, like the mystery of the church.
जैसे नए नियम की जो मर्म है कलीसिया का मर्म के समान ही है.
It is not a mystery in the sense that it is something that cannot be comprehended or understood.
ये ऐसा कोई मर्म नहीं है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं या छुपी हुई बात है जिसको समझ नहीं पाते.
A New Testament mystery is a subject that God has chosen to hide until the right time has come to reveal it.
नए नियम के मर्म में ऐसी ही बात छिपी हुई है कि परमेश्वर ने कुछ बातों को तब तक छुपाए रखा जब तक वो प्रकट करने का सही समय नहीं आया.
So we have the mystery of godliness and the mystery of the church.
इसलिए हम भक्ति के मर्म को पाते हैं, कलीसिया के मर्म को पाते हैं.
2 Thessalonians 2, the mystery of iniquity.
और दूसरे तस्सलोनी के दूसरे अध्याय में जो अन्याय है, बुराई है, उसके मर्म को हम पाते हैं.
You see these things are things which God has hidden in the Old Testament scriptures.
ये ऐसी बातें हैं जिसको पुराने नियम में परमेश्वर ने छिपा के रखा.
Because the time had not yet come to reveal them.
क्योंकि वो समय अभी तक नहीं आया था कि ये सत्य प्रकट हो.
It wasn't that Daniel lacked in intellect.
और ये ऐसा नहीं है कि दानियल अपने ज्ञान और अपने बुद्धि में इन बातों को लिख रहा है.
It wasn't that he lacked in godliness.
ये इसलिए नहीं कि वो उसके मन में भक्ति नहीं थी.
He was wiser and more godly than any of us.
हम जानते हैं वो हमसे बुद्धिमान था और हमसे भी बड़ा भक्त था.
But God reveals things in his own time.
लेकिन परमेश्वर किसी बात को प्रकट करता है तो वो सिर्फ अपने समय पे प्रकट करता है.
So there's an important point to see between verses 26 and 27 of Daniel 9.
इसलिए दानियल के 26वें पद, 9वें अध्याय के 26 और 27 पद के बीच ये महत्वपूर्ण मर्म छिपा हुआ है.
Daniel didn't realize as he wrote this prophecy.
दानियल जब इन भविष्यवाणी को लिख रहा था उसको इस बात का ज्ञान नहीं था.
That in this period of 490 years that he was writing about.
कि इन 490 वर्ष का जो अंतराल जिसके बारे में वो लिख रहा है.
He knew because he tells us.
उसे मालूम था क्योंकि वो हमसे कहता है.
That there would be an initial period of 7 weeks of years, 49 years.
वो कहता है कि 49 वर्षों का एक समय होगा.
And then there would be a further period of 62 weeks of years.
और उसके बाद 62 सप्ताहों का एक वर्ष होगा.
434 years.
434 वर्ष.
And he knew that there would be a final period of 7 years.
और उसके बाद उसे इसका भी ज्ञान हो गया कि 7 वर्ष का एक अंतिम समय भी होगा.
But what he did not know.
जो सत्य उसे नहीं मालूम था.
Was between the 69th week of years.
कि 69वें जो सप्ताहों का जो बरस है.
And the 70th week of years.
और जो 70वां सप्ताह का जो बरस है.
He himself did not know that there was this great long period of time. 2000 years that we call the church age.
उसको नहीं मालूम था कि 2000 वर्ष का एक लंबा समय है जिसको हम कलीसिया का काल कहते हैं.
We have spoken here about weeks of years and certainly in my own language when we speak of a week we automatically think of 7 days.
हम यहां पर अभी सप्ताहों के वर्षों के बारे में कह रहे थे और जब हम अपनी भाषा में एक सप्ताह कहते हैं तो उसमें 7 दिन होते हैं.
But a week in the to the Jew at least simply meant a heptad, a group of 7.
और एक यहूदी के लिए जब सात सप्ताह कहते थे तो सात की संख्या उसके स्मरण में आती है.
It can be a week of days.
वो सप्ताह दिनों से भरे हुए सप्ताह हो सकती है.
It can also be a week of years, a group of seven years.
लेकिन वो वर्षों से भरे हुए सप्ताह भी हो सकती है.
And that's what this group of 70 weeks is about. 70 times 7 years.
और ये 70 सप्ताह जब कहते हैं 70 गुना 7 490 साल.
So it's a group of 490 years.
इसलिए यहां पर हम 490 वर्षों के एक समूह को देखते हैं.
But it is not the first group of 490 years in Israel's history.
लेकिन इसराइल के इतिहास में ये पहला ऐसा समूह नहीं है जहां 490 वर्षों के बारे में बोला गया है.
Now let me refresh your memory about a verse we quoted yesterday.
कल पढ़े हुए एक पद को मैं आपके स्मरण में लाना चाहूंगा.
Matthew chapter 18.
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय.
Verse 21 of Matthew 18.
मत्ती 28:18 के 21वें पद को मैं पढ़ रहा हूं.
Then Peter came to the Lord Jesus and said, Lord, how oft shall my brother sin against me and I forgive him?
तब पतरस ने आकर उससे कहा, प्रभु मेरा भाई कितनी बार मेरे विरुद्ध अपराध करता रहे कि मैं उसे क्षमा करूं?
Till 7 times?
क्या 7 बार तक?
Peter obviously thought this was quite generous.
पतरस ने कहा कि ये तो काफी समय प्रभु काफी अवसर प्रभु दे रहा है.
It would be quite generous, wouldn't it?
ये हम भी सोचे तो काफी अवसर मिल रहा है.
A brother does something to offend you.
एक भाई मेरे हमारे विरुद्ध में कुछ करता है.
And you let him know that you've been offended by it.
और आप उसे बताते हैं कि आपको उससे चोट पहुंची है, दुख पहुंचा है.
He says, I'm very sorry, brother.
वो कहता है, भाई मैं आपसे माफी मांगता हूं.
You forgive him.
आप उसको माफ करते हैं.
Then he does the same thing.
फिर दोबारा वो वैसे ही करता है.
You say you've done it again.
आप कहते हैं, देखो भाई फिर आपने ऐसा गलती मेरे विरुद्ध किया है.
Oh, I'm sorry, brother.
वो कहेगा, भाई मुझे माफ कर दो.
I forgive you.
मैं तुमको माफ करता हूं.
He does it again.
फिर वो जाकर वही गलती मेरे विरुद्ध में करता है.
You say, oh, come on, this boy is not learning.
अब मैं बोलूंगा, ये तो भाई तो बिल्कुल सीख नहीं रहा है.
This is 3 times now.
3 बार उसने मेरे विरुद्ध गलत.
Oh, I'm sorry, brother.
भाई मैं माफी चाहता हूं.
I forgive.
मुझसे माफी मांगता है, मैं उसे माफ कर देता हूं.
Then he does it again.
अब देखो फिर वो मेरे विरुद्ध में गलत काम कर रहा है.
To forgive a brother 7 times for the same thing is generous, isn't it?
7 बार एक भाई को माफ करना तो बहुत बहुत बड़ी बात हो गई.
We would say that was a spiritual thing to do.
हम कहेंगे कि इस भाई ने बड़ा आत्मिक बात किया.
It's a humble thing to do.
ये तो उसने बड़ा नम्र होकर काम किया है.
The Lord said to Peter.
लेकिन प्रभु ने पतरस से कहा,
I don't say unto you 7 times.
प्रभु ने कहा, मैं 7 बार तो नहीं कहता हूं तुमसे.
But until 70 times 7.
वो कहता है 7 बार के 70 गुने तक.
It's interesting that the Lord worded it like that.
ये बड़ा रोचक है कि प्रभु ने इन शब्दों का प्रयोग इस प्रकार से किया है.
It's really as though he was saying to Peter,
ये ऐसा है जैसे वो पतरस से कह रहा है,
I don't say unto you until 7 times.
मैं तुमसे ये नहीं कहता हूं कि 7 बार.
What do I say unto you, Peter? How do I deal with you? How does your God deal with your nation?
पतरस, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, तुम जरा सोचो, तुम्हारा परमेश्वर तुमसे एक प्रजा के रूप में कैसा व्यवहार कर रहा है.
Until 70 times 7.
वो 7 गुना 70 बार तुमसे व्यवहार कर रहा है.
490 times?
490 बार.
490 times to forgive someone for the same thing?
490 बार एक ही अपराध जो एक व्यक्ति दूसरे के विरुद्ध में कर रहा है उसको पाप की माफी मिल रही है?
We would never do that.
हम तो कभी नहीं करेंगे.
Patience would have run out long, long before that.
हमारी जो दीर्घ क्षमा है वो कब की समाप्त हो गई होती.
But now God looks at his people.
लेकिन प्रभु अपनी प्रजा की ओर देख रहा है.
And now in accordance with the teaching of Leviticus chapter 16.
और लेवी व्यवस्था उसके 16वें अध्याय के शिक्षण के अनुसार.
On the great day of atonement,
और उस छुटकारे के उस महान दिन में,
solemnly the whole nation comes together,
पूरे इस्राएली प्रजा प्रभु के सामने आते हैं,
and they come with 2 goats,
और वो 2 बकरियों के साथ आते हैं,
and the first goat is slain,
और पहला मेर को बलि चढ़ाई जाती है,
the goat upon which the Lord's lot fell,
जिसके ऊपर परमेश्वर का वो चेट गिरा है,
high priest is there,
और महापुरोहित वहां है,
great day of national ceremony,
और पूरा देश इसको मना रहा है,
high priest lifts his hands before God,
और ये महायाजक
प्रभु के सामने अपने हाथों को उठाता है.
He prays to God, he confesses the sins of the people.
और वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, अपने पापों के लिए पश्चाताप करता है.
Ceremonially, those sins are placed upon the head of the scapegoat.
और उस रीति के अनुसार उस मेढ़ के ऊपर लोगों के पाप को रखा जाता है.
And the goat is led away by the hand of a fit man into a place that's not inhabited.
और एक योग्य पुरुष के हाथों में इस बकरे को बाहर ले जाया जाता है, मैदान में जहां लोग कोई नहीं रहता.
God in his mercy says, I forgive you.
प्रभु अपनी दया के अनुसार कहता है, मैंने माफ कर दिया.
The next year they come and they do exactly the same.
अगले वर्ष फिर वो इकट्ठा होते थे एक राज्य के जैसे और वही काम को करते थे.
And the third and the fourth and the fifth and so on.
तीसरे साल, चौथा साल, पांचवा साल ये चल रहा है, चल रहा है.
But have they changed?
क्या उनमें कोई परिवर्तन आया?
No.
बिल्कुल नहीं.
Time after time they're coming to God and they're saying we have sinned.
समय बीतता गया, अनेक अवसरों में प्रभु के पास है और वो कह रहे हैं, प्रभु हमने पाप किया है.
God says I forgive.
प्रभु उनसे कहता है, मैं तुझे माफ करता हूं.
But it doesn't change them.
लेकिन उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं.
See, brethren, we need to remember this for ourselves as well, don't we?
प्रिय भाइयों, इसमें से एक सत्य हम अपने लिए ही समझ लें.
God forgives on the basis of repentance.
प्रभु हमें माफी अपने हम जो पश्चाताप करते हैं, मन फिराव करते हैं, उसके आधार पर करता है.
Repentance is a change of mind and heart.
और जो मन फिराव है वो मन और हृदय का बदलाव है या परिवर्तन है.
We know from John's teaching that we as believers, when we sin, it affects our fellowship with God.
हम योहन्ना के भागों में हम देखते हैं कि योहन्ना शिक्षा देता है कि हम जो विश्वासी हैं प्रभु से पाप करते हैं तो हमारे संगति पर उसका असर होता है.
And thankfully we are taught that if we confess our sin,
और प्रभु को धन्यवाद दे हमें ये शिक्षा दी है कि हम अपने अपराधों को मान ले.
He is faithful and just to forgive us our sin.
वो विश्वास योग्य है कि हमें हमारे अपराधों से क्षमा करे.
And to cleanse us from all unrighteousness.
और सारे अधार्मिकता से शुद्ध कर दे.
Does that mean I'm then free to go and sin again?
इसका क्या इसका अर्थ है कि मैं बार-बार जाकर उस पाप को कर सकता हूँ?
We come back to the question that Paul asked the Romans.
अगर हम उस सवाल की ओर आ जाएंगे जो प्रेरित पौलुस ने रोम के विश्वासियों से पूछा.
They say, well, if my sin makes the grace of God abound.
वो लोग कहते थे कि मेरे पाप करने के कारण परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ रहा है.
If my sin provokes the forgiveness and the grace of God.
कि मेरे पाप करने के द्वारा परमेश्वर इसके बाध्य हो जाता है कि वो मुझे माफ करे.
Well, the more I sin, the more grace there is.
इसलिए मैं जितना पाप करता हूं अनुग्रह बढ़ता रहता है.
Paul says, absolutely not.
पौलुस कहता है बिल्कुल नहीं.
Absolutely not.
बिल्कुल नहीं.
That I as a believer in the Lord Jesus should have an increasing sense of the sinfulness of sin.
कि मुझ में जब एक विश्वासी हूं तब मेरे सामने पाप की भयंकरता का बोझ होना चाहिए.
Sin doesn't matter, does it? I mean, all I have to do is confess it, God will forgive it.
पाप का कोई पाप कोई मायने नहीं रखता. मैं मुझसे गलती हो जाए, पाप हो जाए, मैं जाके माफी मांग लूंगा.
But never forget that the grace of God forgives.
लेकिन आप इस बात को ना भूले कि यह परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो हमें माफी देता है.
But eventually the government of God will judge.
लेकिन एक दिन प्रभु की प्रभुता हमारे ऊपर न्याय करेगी.
He did that with his people.
उसने अपने लोगों के साथ ऐसा किया.
He'll do it with me and he'll do it with you.
वो एक दिन उसी पाप को आपके और मेरे साथ वैसे ही व्यवहार करेगा.
God's patience is far greater than that of any man.
पर परमेश्वर का जो दीर्घ क्षमा है वो किसी भी मनुष्य के दीर्घ क्षमा से बढ़कर है.
But it has its limits.
लेकिन उसकी भी एक सीमा है.
And it seems from scripture that the limit that God sets upon it is 70 times 7.
और परमेश्वर के शास्त्र को अगर देखेंगे तो जो सीमा प्रभु ने रखा है वो 7 × 70 बार है.
So that number 490 is significant.
इसलिए ये जो संख्या है 490 ये बहुत महत्वपूर्ण.
Because God has dealt with his ancient people in groups of 490 years.
क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुरातत्व लोगों से इस 490 की संख्या के अंतर्गत काम किया है.
Some have calculated, and it's not on this chart, some have calculated that from the time when God called Abraham as the ruler of the Chaldees.
कुछ लोगों ने इस प्रकार से इस संख्या को बनाया है, गुण किया है कि जब प्रभु ने अब्राहम को कल्देओं के देश से बुलाया.
In Genesis chapter 12.
उत्पत्ति उसके 12वें अध्याय में.
Until the time of the Exodus in Exodus chapter 12.
और निर्गमन के पुस्तक में जब वो मिस्र देश को छोड़कर निर्गमन करते हैं.
490 years.
490 वर्ष.
And as you can see on the chart that we've got here.
जैसे अब आप जो चार्ट जो आपके हाथों में और स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उस पर देखेंगे तो
फ्रॉम द टाइम दैट दे केम इनटू कैनन
कि जब वो कनान में आए तब से
to the setting up of the kingdom 490 years.
और राज्य की जब स्थापना हुई 490 वर्ष.
From the kingdom to them going into captivity into Babylon.
और जब उनके राज्य की स्थापना हुई उसमें से बाबुल में जब वो बंदी बनाकर ले गए
490 years.
490 वर्ष.
God is dealing with his people.
परमेश्वर अपने लोगों के साथ व्यवहार कर रहा है.
And as he sees them in Egyptian bondage in Exodus 12.
निर्गमन के 12वें अध्याय में जब वो अपनी प्रजा को बंधुआई में देखता है मिस्र में.
That period of time ends in judgment.
वो न्याय के साथ उस काल का अंत होता है.
And the judgment is upon Egypt.
और उस समय न्याय मिस्र के ऊपर हुआ था.
And God brings his people out.
और परमेश्वर अपने लोगों को बाहर ले आया.
From Canaan to the kingdom.
अब कनान से लेकर जब इसराइल के राज्य की स्थापना हुई
that period ends in judgment.
वो उस युग का भी अंत न्याय के साथ होता है.
You say, did it really? I thought the start of the kingdom was the start of a glorious phase for Israel.
आप कहेंगे कि क्या वास्तविक रूप से अरे इसराइल का जब आरंभ हुआ राज्य का वो तो बड़ी महिमा के साथ हुआ है.
No, it ended in judgment.
लेकिन आप अगर देखेंगे 490 वर्ष के बाद वहां न्याय हुआ है.
Because they insisted that they should have a king because the other nations have got a king.
उन्होंने परमेश्वर से कहा कि हमें भी एक राजा क्यों चाहिए क्योंकि हमारे चारों ओर के अन्य जातियों के पास भी राजा है.
And God said, you don't need a king, you have me.
परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम्हें एक राजा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तुम्हारे लिए मैं हूं.
एंड थ्रू द प्रीस्टहुड एंड थ्रू द टेंपल यू कम टू मी.
और परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम इन याजकों की विधियों से और मंदिर के द्वारा तुम मेरे साथ रहोगे.
प्रॉब्लम वाज द प्रीस्टहुड वाज इन अ टेरिबल कंडीशन.
लेकिन समस्या ये थी कि जो याजकगण थे वो बड़े विशेष कठिन अवस्था में थे.
वी वांटेड टू सी द कंडीशन ऑफ थिंग्स इन द डेज व्हेन सैमुअल वाज रेज्ड अप.
आपको मालूम होगा सैमुअल का जब पालन पोषण हो रहा था उन दिनों के बारे में जरा सोच कर देखिए.
द लास्ट ऑफ द डेज ऑफ द जजेस.
वहां पर न्यायियों के अंतिम दिन थे.
Every man doing that which was right in his own eyes.
हर एक मनुष्य अपनी मर्जी के अनुसार जो आंखों के सामने सही लग रहा वो कर रहा है.
The doors of the house were shut.
और घर के दरवाजे मंदिर के दरवाजे बंद.
The high priest was blind.
महापुरोहित महायाजक यहां पर अंधा हो गया है.
His sons were vile men.
उसके बच्चे जो थे बुरे मनुष्य थे.
Oh, how sadly it had all collapsed.
देखिए कितने भयंकर रूप से सब कुछ समाप्त हो रहा है.
The people of God thought the answer was to have a king.
लोगों ने सोचा अब हमें भी एक राजा होना चाहिए.
No, God says the answer is to repent.
परमेश्वर ने कहा नहीं पश्चाताप करो मन फिराओ ये उसका.
You know, we make the same mistakes in our own way of doing things amongst the Lord's people.
प्रियो हम भी परमेश्वर के लोगों के बीच में जब काम करते हैं हम भी इन्हीं गलतियों को करते हैं.
A brother phoned me once.
एक बार एक भाई ने मुझको फोन पर बुलाया.
Brother, could you come for 2 weeks of special meetings?
उन्होंने कहा कि भाई आप 2 सप्ताह के स्पेशल मीटिंग के लिए हमारे कलीसिया में आ सकते हैं.
Possibly.
मैंने कहा हो सकता है.
Why would you like me to come?
उन्होंने पूछा कि मैंने पूछा आप क्यों चाहते हैं कि मैं वहां.
Well, brother, we've had some problems in the assembly and certain people aren't getting on with each other.
भाई हमारी कलीसिया में कुछ समस्याएं आ गई हैं. कुछ भाई आपस में बिल्कुल बात भी नहीं कर पा रहे हैं.
So we thought if we had some special meetings that would unite everybody.
हमने ये सोचा कि अगर कुछ स्पेशल मीटिंग होंगे तो हम सब एक हो जाएंगे.
I said, brother, you don't need 2 weeks of my teaching.
मैंने उनसे कहा कि भाइयों तुम्हें मेरे 2 सप्ताह की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है.
You need 2 weeks of prayer meetings.
आपको एक प्रेयर मीटिंग का आयोजन करना है.
I'm not coming.
मैं नहीं आ रहा हूं.
Not until you as an assembly have been on your knees and put things right with the Lord.
जब तक आप एक कलीसिया के रूप में अपने घुटनों पर आकर प्रभु के साथ ठीक नहीं हो जाएंगे.
We're not very good at that, are we?
हम उसमें अच्छे नहीं हैं.
I don't know about the companies of Christians that you meet with.
मुझे नहीं मालूम आप जो मसीही समूह में हैं वो कैसा है.
We have meetings for this and we have meetings for that.
हमारे यहाँ मीटिंग इस बात के लिए मीटिंग उस बात के लिए मीटिंग होती है.
And by the grace of God, I have been in local assembly fellowship for 40 years now.
और प्रभु के अनुग्रह और दया है कि मैं एक स्थानीय कलीसिया में पिछले 40 वर्षों से संगति में हूँ.
There is one kind of meeting that I have never been in.
एक ऐसा मीटिंग है जिसमें मैं आज तक नहीं गया हूँ.
And that is a meeting where godly men have said to a company of Christians, we are not what we should be before God.
जहां पर भक्त लोगों ने विश्वासियों के समूह के सामने कहा कि हम जो होना चाहते हैं वो नहीं है.
So we're going to come together as an assembly of believers and we're going to stay in the presence of God in repentance and prayer until we've got this put right.
क्योंकि हम वैसे नहीं हैं इसलिए हम एक साथ इकट्ठे होंगे प्रभु के सामने पश्चाताप करेंगे रोएंगे गिड़गिड़ाएंगे और प्रार्थना करेंगे.
Have you been in a meeting like that?
क्या आप लोग कभी ऐसे एक मीटिंग में गए हैं?
If there were more meetings like that, we would know more about the power of God.
अगर ऐसे और अधिक मीटिंग हमारे बीच में होते तो प्रभु के सामर्थ्य को हम अपने जीवन में अनुभव कर पाते.
What stops us as companies of Christians from falling on our knees and pleading with God because we're not the people we should be?
ऐसी कौन सी बात है जो हमें रोक रही है, हम प्रभु के लोग हैं, कि प्रभु के सामने गिरे और प्रभु से कहे, प्रभु आप जैसा चाहते हैं ऐसे लोग हम अभी तक बन नहीं पाए हैं.
What stops us doing it is the same thing that stopped Israel doing it.
हमें जो बात रोक रही है वही बात इसराइलियों को भी रोक रही थी.
And it's called pride.
और वो है अहंकार या घमंड.
It's the origin of sin.
और हम जानते हैं पाप का आरंभ भी वहीं हुआ था.
They were saying, we are the people of God.
वो कह रहे थे कि हम प्रभु की प्रजा हैं.
He chose us, didn't he?
प्रभु ने हमें चुन लिया है.
God is bound to bless us.
और परमेश्वर ने हमें आशीष देने का वादा किया है.
Well, now he's not.
बिल्कुल नहीं.
Yes, we are the people of God. We praise him for his grace.
निश्चित रूप से हम प्रभु की प्रजा हैं. हम उसके लिए उसको धन्यवाद देते हैं.
But we have solemn responsibility to live for God and to walk and speak with God and remember who we are.
लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ईश्वरीय जिम्मेदारी है कि हम प्रभु के साथ चले, प्रभु से बातें करें और प्रभु के लिए अपने जीवन को बिताएं.
Come brethren, do you look around you where you minister for the Lord? Do you see evidences of pride amongst God's people?
प्रियो, क्या आप जहां काम करते हैं वहां पर प्रभु के लोगों के जीवन को अहंकार को आप देखते हैं?
Let's be honest in the sight of God today. Do you see pride amongst God's people?
क्या प्रभु के लोगों के बीच इस इन अहंकार के चित्रों को आप देखते हैं, क्षणों को देखते हैं?
Do you look within and see it as well?
कि आप अपने हृदय में देखकर उसी चीज को अपने हृदय में पाते हैं?
Oh, may God be merciful to us.
हे प्रभु, मुझ पर दया दिखा.
Yes, we have gathered for prophecy teaching.
हाँ, हम यहाँ पर प्रोफेसी के अध्ययन के लिए, भविष्यवाणी के अध्ययन के लिए सिर्फ बैठे हुए हैं.
But remember what Peter teaches in 2 Peter 3.
लेकिन दूसरा पत्रस, उसके तीसरे अध्याय में पत्रस क्या सिखाता है?
Seeing and that ye know these things.
कि तुम देख रहे हो, इन बातों को जानते हो.
What manner of persons ought we to be?
हम किस प्रकार के पुरुष या मनुष्य बन जाए?
This knowledge should have a profound humbling effect upon my soul.
ये जो ज्ञान हम जो सीख रहे हैं, हमारे जीवन में नम्रता की भावना को ले आए.
The teaching of prophecy is not first for the mind, it's for the heart.
ये भविष्यवाणी की शिक्षा हमारे दिमाग के लिए नहीं, हमारे हृदय के लिए है.
All the great men who were associated with the prophetic scriptures.
और जितने प्रभु के दास इन भविष्यवाणी की शिक्षाओं से जुड़े हुए हैं,
were men who knew what it was to be on their knees. They were humbled by the knowledge that God gave them.
उनके बारे में पवित्र शास्त्र कहता है कि ये पुरुष सब अपने घुटनों पे थे, परमेश्वर ने जो उनको ज्ञान दिया है उसके लिए वो नम्र होकर उसके सामने गिर रहे थे.
And if only Israel had humbled themselves.
अगर इसराइल ने अपने आप को नम्र किया होता.
But they didn't.
लेकिन उन्होंने नहीं किया.
So at the end of each period of 490 years, God moved in judgment.
इसलिए अगर हम उन 490 वर्षों के अंत को देखेंगे, परमेश्वर का न्याय उनके ऊपर गिरा है.
As we say in the first period, if from Abraham to the Exodus is 490 years.
जैसे हमने देखा कि अब्राहम से लेकर निर्गमन तक 490 वर्ष थे.
The judgment primarily fell on Pharaoh.
लेकिन वहां पर न्याय फिरौन के ऊपर गिरा है.
Why?
क्यों?
Because he hardened his heart.
क्योंकि उसने अपने हृदय को कठोर किया है.
And the people hardened their heart in the days of the kingdom. And God says, okay, I'll give you a king, but you're going to be sorry.
और जब राज्य की स्थापना हुई, इसराइलियों ने अपने हृदय को कठोर किया, प्रभु परमेश्वर ने कहा, ठीक है, तुम भी एक राजा को रख लो.
And instead of enjoying the rest, the peace of the land, they were in constant warfare ever afterwards.
और हम जानते हैं उसके बाद जहां पर प्रभु ने उनको लाया वहां शांति और सुख के साथ रहने को छोड़कर वो निरंतर दूसरों से युद्ध करते रहे.
And also, as the kingdom came in and they took a step away from the rule of God.
और जब राज्य की स्थापना हुई, इसराइल राज्य की स्थापना, और वो प्रभु से एक कदम पीछे जब चले गए.
So they began a history of idolatry.
और हम देखते हैं कि वो मूर्ति पूजा में चले गए.
Can we imagine what that meant to a God who was jealous for the holiness of his people?
आपको मालूम है ये जो अवस्था में वो चले गए, इसका प्रभाव परमेश्वर के ऊपर कैसे पड़ा है जो अपने लोगों की पवित्रता के लिए जलन रखता है?
He had revealed himself to them, he had blessed them, he had proved beyond doubt that he was their God and they were his people.
परमेश्वर ने अपने आप को अपनी प्रजा के सामने प्रकट किया था, प्रभु ने बहुत से अद्भुत कार्यों को उनके बीच में किया था और बिना शंका के कोई भी विश्वास कर सकता था कि यही उनका परमेश्वर है.
Yet he said, you have been like an unfaithful and a promiscuous woman. You have just gone a whoring after all these false gods.
लेकिन उसने कहा, प्रभु ने परमेश्वर ने अपनी प्रजा को देखकर कहा, तुम उस स्त्री के समान हो जो अपने पति के साथ व्यभिचार करके दूर चली गई है.
As believers, we're not troubled with idolatry, are we?
हम जब विश्वासी हैं तो क्या हम मूर्ति पूजा के कारण परेशान हैं?
Are we?
क्या हम परेशान हैं?
What is an idol?
एक मूर्ति क्या है?
An idol is anything that takes in my heart the place that God alone should have.
मूर्ति वो वस्तु है जो मेरे हृदय में परमेश्वर से बड़ा स्थान रखता है.
Money can be an idol.
आपका धन आपके लिए एक मूर्ति बन सकती है.
Power can be an idol.
आपका जो ताकत है, सामर्थ्य है लोगों के बीच में, वो आपके लिए एक मूर्ति बन सकती है.
Even my family can be an idol.
यहां तक कि मेरा परिवार मेरे लिए मूर्ति के सदृश हो सकता है.
Is the work of God being limited in me because I haven't got the strength to put the things of God before my family?
क्या परमेश्वर का काम इसलिए रुका हुआ है कि मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मेरे परिवार से ज्यादा स्थान और समय प्रभु को दे पा रहा हूं?
What does the Lord Jesus require from me?
प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे क्या चाहता है?
40%?
40%?
80%?
80%?
Everything.
प्रभु सब कुछ चाहता है.
If he is Lord, then he must have everything.
अगर वो हमारे जिंदगी जीवनों का प्रभु है तो उसे सब कुछ चाहिए.
100%.
100%.
The man, the dear brother in Christ who solemnized my marriage in 1974.
परमेश्वर का वो दास जिसने मेरा विवाह 1974 में संपन्न किया था.
As he looked at this young man and young lady in front of him.
जब परमेश्वर के दास ने उस जवान पुरुष और उस बहन को जब सामने देखा,
He said, I want you to remember this in your married life.
उन्होंने हमारी आंखों में देखकर इस प्रकार से कहा, तुम्हारे विवाह के जीवन में ये बात मैं चाहता हूं.
If Jesus is not Lord of all,
अगर प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे जीवन का प्रभु होकर नहीं है,
then he is not Lord at all.
तब वो प्रभु ही नहीं है.
Because lordship is total.
क्योंकि जब हम प्रभु कहते हैं तो वो संपूर्णता को दिखाता है.
If we're not prepared to make sacrifices for Christ,
अगर हम प्रभु यीशु मसीह के लिए त्याग सहने के लिए तैयार नहीं है,
to sacrifice our time and our strength, and yes, it would be lovely for me to be at home now with my family.
कि हम अपना समय अपने कार्यों को प्रभु के लिए त्याग देने के लिए तैयार नहीं है, कि ये अच्छा होगा कि मैं अपने परिवार में रहूं, ये अच्छी बात है.
But we delight by God's grace, only by God's grace, to be in his service.
लेकिन प्रभु के अनुग्रह के कारण उसकी सेवकाई में रहने में हमें आनंद है.
And the Lord gives compensations. The Lord is so kind to us.
और परमेश्वर उसकी भरपाई करता है क्योंकि वो दयालु है.
But you know, the greater sacrifice is not mine.
लेकिन आप ये जान लीजिए कि जो बड़ा त्याग कर रहा वो मेरा नहीं है.
The greater sacrifice is with my wife.
जो सबसे बड़ा त्याग है मेरी पत्नी कर रही है.
9 months of last year, I was away from home.
पिछले बरस 9 महीने घर से बाहर था.
I'm not saying, look at me, how good I am. I'm not saying that.
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे को देखिए, मैं कितना अच्छा हूँ.
What I'm saying is that we have to be men of sacrifice.
कि हमें त्याग सहने वाले पुरुष बनना आवश्यक है.
There was a time when Peter and his brethren had been fishing all night.
हाँ, एक समय ऐसा था जब पतरस और उसके भाई रात भर मछली पकड़ रहे थे.
They hadn't caught anything.
उनको कुछ नहीं मिला.
Tired and dispirited, they are now cleaning the nets and folding the nets up and getting everything ready for the next day.
थक गए, कमजोर हो गए, हताश हो गए, अपने जालों को बांध रहे थे अगले दिन के लिए.
What did the Lord say to them?
प्रभु उनके पास पहुंचा, प्रभु ने उनसे क्या कहा?
I need your boat.
मुझे तुम्हारी नाव की आवश्यकता है.
Come on, we're going out.
आओ हम जरा झील में फिर निकल जाएं.
These were men who had been up all night.
और इन लोगों ने कहा कि हम तो पूरे रात भर इस काम में लगे हुए थे.
Surely the Lord is going to let me take rest.
निश्चित रूप से प्रभु अभी आराम करने का समय है.
There are times to take rest.
हाँ, आराम करने का भी समय होता है.
There were times when the Lord said, "Come ye apart and rest a while."
ऐसा समय भी था जब प्रभु इस संसार में थे, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, चलो हम कुछ अलग चलते हैं, तुम्हें आराम की जरूरत है.
But there's times when the Lord says, "Do you feel tired?"
लेकिन जब ऐसा क्षण आता है जब प्रभु कहता है, क्या तू कमजोर है?
Is your strength finished?
क्या तू थका हुआ है? तेरे पास ताकत नहीं है?
Come with me, I'll renew your strength.
आजा मेरे साथ, मैं तुझे ताकत दूंगा.
For they that wait upon their Lord shall renew their strength.
क्योंकि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो अपने सामर्थ्य शक्ति को प्राप्त करेंगे, नया होकर पाएंगे.
They shall mount up with wings as eagles.
और गिद्धों के समान पंख फैलाते हुए उड़ जाएंगे.
They shall run and not be weary and they shall walk and not faint.
और वो दौड़ेंगे लेकिन थकेंगे नहीं, वो चलेंगे लेकिन कमजोर ना पड़ेंगे.
The real joy of our service and ministry for the Lord comes when we have run out of our own strength and we're doing things in the strength of himself.
वास्तविक रूप से जब हम अपने असामर्थ्य को पूर्ण रूप से खो देते हैं और परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, तब परमेश्वर के कार्य का आनंद हमारे जीवन में अनुभव करते हैं.
Oh, if only we knew, brethren, that idols can lurk in our hearts and in our lives and unless we look for them we don't even know they're there.
प्रियो, इस सत्य को हम जान ले कि मूर्ति हमारे जीवन में विभिन्न रूप से आते हैं और एक पल ऐसा भी आ जाता है हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि वो हमारे जीवन के भागी बन गए हैं.
And idolatry brought the people of God into desperate failure. And God's patience after 490 years ran out.
और हम शास्त्र में पढ़ते हैं मूर्ति पूजा परमेश्वर के लोगों के जीवन में पराजय का कारण बन गया और वो दुख और संकट में चले गए.
They looked at the temple and they took such pride in it.
वो अपनी मंदिर की ओर देखते थे और उस पर बहुत घमंड करते थे.
Beautiful temple, this is God's house.
वो कहते थे कि ये कितना सुंदर मंदिर है.
They boasted about the house.
उन्होंने परमेश्वर के उस मंदिर के बारे में उन्हें बहुत घमंड था.
But they had forgotten the God of the house.
लेकिन उस मंदिर में रहने वाले परमेश्वर को वो भूल गए थे.
And they had forgotten that there were rules about the house.
और वो भूल गए थे कि उस मंदिर के कुछ नियम हैं.
Oh, we say we wouldn't be like that.
हम कहेंगे कि नहीं नहीं हम तो ऐसे नहीं है.
What is God's house today?
आज परमेश्वर का घर कैसा है?
The house of God is made up now of living stones, every believer in the Lord Jesus Christ saved by his grace.
आज परमेश्वर का भवन जीवित पत्थरों के द्वारा बना हुआ है. हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता होकर स्वीकार कर विश्वास में आता है उस घर में जुड़ता जा रहा है.
But Paul wrote to Timothy.
और उस तिमोथियुस को लिखते हुए कहता है.
First Timothy chapter 3.
पहला तिमोथियुस के तीसरे अध्याय में.
And he said, now Timothy, these things write I unto you, hoping to come unto you shortly.
तिमोथियुस से वो कहता है कि इन बातों को मैं इसलिए तुम्हें लिखता हूं, आशा करता हूं कि शीघ्र तुम्हारे पास आऊंगा.
But if I tarry,
यदि मेरे आने में विलंब हो,
that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God.
तुझे मालूम हो कि परमेश्वर के परिवार में तुझे कैसा व्यवहार करना है.
Which is the church of the living God.
जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है.
Pillar and ground of the truth.
जो सत्य का स्तंभ तथा आधार है.
What was he speaking about?
वो किसके बारे में कह रहा था?
He was speaking about that company of Christians in Ephesus.
वो एफेसस के छोटी से विश्वासियों के झुंड के बारे में कह रहा था.
House of God.
परमेश्वर का भवन.
Church of the living God.
जीवित परमेश्वर का मंदिर या भवन.
And you could point, my dear brother, you could point to any company of believers with whom you are associated.
प्रियो, आप अपनी उंगली किसी भी उस झुंड की ओर उठा सकते हैं जहां जिसके साथ आपका संबंध है.
You look at that company of Christians saved by God's grace.
आप विश्वासियों के उस झुंड को देखते हैं जो प्रभु के अनुग्रह के द्वारा उद्धार में आए हैं.
Baptized to acknowledge the lordship of Christ. Baptized to acknowledge the Lordship of Christ.
जिन्होंने बपतिस्मा लिया है और प्रभु यीशु मसीह के प्रभुत्व को अपने जीवन में स्वीकार किया है.
Now gathering in simple obedience to the word of God.
अब वो प्रभु की आज्ञा के अधीन होकर छोटे छोटे झुंडों में खटे हैं.
When you look at that company of Christians.
जब आप विश्वासियों के समूह को देखते हैं.
Looking at the house of God.
आप प्रभु के भवन को देख रहे हैं.
Do you really look at it as the house of God?
क्या आप जब उसे देखते हैं तो प्रभु के भवन के रूप में देखते हैं?
Because the first time we read that title in the word of God.
क्योंकि पहले बार आप परमेश्वर का घर इस भाग को पढ़ते हैं.
Is in Genesis chapter 28.
वो उत्पत्ति उसके 28वें अध्याय में है.
Where Jacob, as he spent the night in the ruined city of Luz.
जहां पर याकूब लूज में जो टूटा फूटा शहर था वहां पर जब संध्या को विश्राम कर रहा था.
एंड ही हैड दैट ट्रेमेंडस ड्रीम व्हिच इज अबाउट मिलेनियल ग्लोरी.
और उसने उस भयंकर दृश्य को देखा ना, स्वप्न को देखा जो हजार बरस के राज्य के एक चित्र था.
That way he cast up to heaven and the angels of God ascending and descending.
और उसने देखा एक सीढ़ी है जो स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरा हुआ है और स्वर्गदूत उससे उतर रहे हैं चढ़ रहे हैं.
And when Jacob woke in the morning,
और जब याकूब सुबह उठ गया,
this tremendous dream,
उसने स्वप्न बहुत एक भयंकर स्वप्न उसने देखा.
He said, this is a dreadful place.
उसने कहा कि ये एक भयंकर जगह है.
God is here and I didn't know it.
उसने कहा परमेश्वर यहां पर है और मुझे मालूम भी नहीं हुआ.
He said this is nothing else than the house of God and the gate of heaven.
उसने कहा कि ये और कोई नहीं, ये परमेश्वर का घर है, भवन है और स्वर्ग का द्वार है.
That's why he called it Bethel, house of God.
इसीलिए उसने उसका नाम बेथेल रखा, हाउ परमेश्वर का भवन.
Oh, Jacob is in a very, very stricken condition.
याकूब कांप रहा है.
And we might go to him, we might draw alongside him in spirit and say, Jacob, can we speak to you?
हम आत्मा में उसके पास जा रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं, उनसे कह रहे हैं, याकूब मैं आपसे बात कर सकता हूं.
We've just heard what you've said, Jacob.
याकूब मैंने अभी सुना तुमने जो कहा.
With a trembling voice you've just said, this is a dreadful place, this is none other than the house of God.
तू तो बड़े भयंकर कांपते हुए शब्दों से कह रहा है कि ये तो परमेश्वर का भवन है, यहां परमेश्वर का रहने का स्थान है.
But we don't know what you mean, Jacob.
लेकिन याकूब हमें समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो.
What is the house of God?
यहां पर कहां है परमेश्वर का भवन.
There's nothing here.
यहां तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा हूं.
There's these few stones that you slept with last night.
यहां तो कुछ पत्थर दिखाई दे रहे हैं जिस पर तूने सर रखकर सोया विश्राम किया है.
There's a few little bushes and that's all there is, Jacob. It's desert.
याकूब ये तो मरुस्थल है, यहां पर कुछ झाड़ियां पेड़ पौधे दिख रहे हैं बस.
Where is this house of God?
परमेश्वर का भवन जिसके बारे में तू कह रहा था कहां है.
Jacob would say, did you not hear what I said?
याकूब हमसे कहेगा क्या तूने सुना नहीं मैंने जो कहा.
God is in this place.
परमेश्वर यहां पर है.
That's what makes it the house of God.
और वही कारण से हम कह सकते हैं ये परमेश्वर का घर है.
And that's always been true.
और ये हमेशा सत्य रहा है.
The house of God would take different form.
परमेश्वर का भवन कई रूप को लेता है.
Tabernacle.
अब हम देखते हैं जो मंडप है.
Temple.
और मंदिर है.
And now people.
अब लोग हैं.
But that fundamental principle of the house of God has never changed.
लेकिन परमेश्वर का भवन का जो सैद्धांतिक उपदेश है उसमें कोई बदलाव नहीं आया है.
The temple did not make it the house of God.
वहां इतनी भव्य मंदिर है इसलिए वो परमेश्वर का भवन नहीं है.
The presence of God made it the house of God.
लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति उस मंदिर में उसको परमेश्वर का भवन बना देता है.
And yet the glory had departed and the people never knew it.
लेकिन लोगों को यह मालूम नहीं था कि परमेश्वर का महिमा का साया वहां से उठ चुका है.
Do you look upon the local assembly with which you meet, my dear brother, and you see it as the house of God?
क्या प्रिय भाइयों, जब आप परमेश्वर के लोगों की छोटी सी झुंड को देखते हैं तो आप ये समझते हैं ये परमेश्वर का भवन है.
The presence of God.
परमेश्वर की उपस्थिति है.
Oh, men who have been in the presence of God in Scripture are men who are broken men.
हाँ, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के पुरुष जिनको हम वचनों में पाते हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहे हुए वो टूटे हुए मनुष्य थे.
When you see how men can behave amongst each other in a local assembly.
लेकिन जब आप लोगों को देखते हैं, विश्वासियों को, उनका व्यवहार एक दूसरे के प्रति.
Do you think they are men who appreciate that the presence of the God of heaven is there?
क्या वो पर विश्वासी है जो इस बात को समझ रहे हैं कि परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता हमारे बीच में उपस्थित है.
Jacob said, this is the house of God and this is the gate of heaven.
याकूब ने कहा कि यह परमेश्वर का भवन है, घर है और यहां पर स्वर्ग का द्वार है.
Whenever you read in your Bible of the gate of the place,
जब आप पवित्र शास्त्र में किसी भी स्थान के गेट या द्वार के बारे में पढ़ते हैं,
it is a place where administration is carried out.
वो ऐसा एक स्थान है जहां से व्यवस्था चलाई जाती है या नियंत्रण चलाया जाता है.
It's the place where the elders of the city sat.
वो ऐसा एक स्थान है शासन चलाने के लिए जो नगर के बुजुर्ग बैठा करते थे.
When Abraham wanted to settle the deal concerning the cave at Machpelah to bury his wife.
जब अब्राहम मकपल्ला के जो गुफा है उसके संबंध में जो लिखा पढ़ी खत्म करना चाहता था.
It was done at the gate of the city.
हम पढ़ते हैं कि उस शहर के द्वार पर यह काम हुआ है.
When Lot,
जब लूत,
when he went down again into Sodom and dwelt there.
जब सोदोम में रहने के लिए चला गया.
Where did he finish up?
उसने वो कहां पर बैठा हुआ हम पाते हैं.
Sitting in the gate of the city.
हम पढ़ते हैं वो नगर के द्वार के पास बैठा हुआ था.
He became one of the rulers, one of the elders.
और वो उस नगर का एक प्राचीन या एक वडील बन गया.
When Boaz would conclude the redemption of Ruth as his wife in Ruth chapter 4.
जब बोआज रूथ को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए विधि और नियमों को पूर्ण कर रहा था.
Where was it settled?
हम पढ़ते हैं कि वो कहां पर उस बात पर निर्णय पे पहुंचे.
The gate of the city.
वहां पर पढ़ते हैं नगर के द्वार पर वो लिखा पड़ी हुई.
So the gate of the place is the place where rule and administration is carried out.
इसलिए एक नगर का द्वार वो स्थान होता है जहां पर प्रशासन की विधियों को पूरा किया जाता है.
What did Jacob say about the house of God?
याकूब ने परमेश्वर के भवन के बारे में क्या कहा?
Gate of heaven.
उसने कहा कि यहां पर स्वर्ग का द्वार है.
In other words, the house of God is the place where the rule of heaven is acknowledged.
यह परमेश्वर का भवन ऐसा एक स्थान है जहां पर स्वर्ग का नियम ऐसा है कर स्वीकार किया जाता है.
Heaven's rule.
जहां पर स्वर्ग का नियम चलता है.
Heaven's administration.
जहां पर स्वर्ग का प्रशासन चल रहा है.
We can understand why the Lord Jesus was angry when he went into the temple and saw the money changers and all these people.
इसलिए हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम के मंदिर में गए वहां की बातों को देखकर वहां पर जो लोग बेच रहे थे खरीद रहे थे उसको देखकर वो कैसे उन पर क्रोधित हो गया.
You've taken the house of God and turned it into a den of thieves.
उन्होंने कहा कि तुमने परमेश्वर का भवन को चोरों के गुफाओं के रूप में बना दिया है.
Again, I have to look at the local assembly where I gather with my brethren and sisters.
इसलिए मुझे आवश्यक है कि मैं अपने स्थानीय कलीसिया को देखूं जहां पर मैं अपने भाइयों के साथ इकट्ठा होता हूं.
Is it the Lord's assembly?
क्या ये परमेश्वर का कलीसिया है?
Is it truly a place where humbly before God and in reverential fear we seek to acknowledge the rule and the direction of heaven?
क्या हम वो हमारी कलीसिया ऐसा एक जगह है जहां पर कांपते हुए भय के साथ बड़े डर के साथ स्वर्ग के नियम को लागू करने के लिए हम लोग इकट्ठा होते हैं?
If I once realize this,
अगर हम इस सत्य को जान लेंगे,
then I won't be trying to promote my ideas in a local assembly.
तब एक स्थानीय कलीसिया में मेरी मर्जी को चलाने की कोशिश मैं बिल्कुल नहीं करूंगा.
But with godly fear, we'll be searching the word of God. How does God want me to behave?
लेकिन भय के साथ मैं इस बात की कोशिश करूंगा, इस जात को जानने की कोशिश करूंगा वचन से कि मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए.
Have you got work to do when you get back home, brethren?
अगर आपको काम करना है, अगर आप घर वापस जाते हैं.
Come now, you're here as leaders. Amongst the people of God.
अभी आप अगुओं के रूप में हैं, प्रभु के लोगों को चलाने वालों के रूप में.
If we don't appreciate this truth, how are we going to teach it to others?
अगर ये सत्य को हम अपने जीवन में पालन नहीं करना चाहते, लागू नहीं करते, हम दूसरों को जाकर क्या सिखाएंगे?
Because the younger believers who you are influencing, whether you know it or not.
लेकिन जो जवान भाई जो आपके प्रभाव के अधीन आ रहे हैं, भले आप जाने या अनजान हो उससे.
They're not just listening to your words.
वो आपके शब्दों को ही सिर्फ नहीं सुन रहे हैं.
They're watching your life.
वो आपकी जिंदगी को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं.
And they're watching how you behave in the local assembly.
वो ये देख रहे हैं कि स्थानीय कलीसिया में आपका व्यवहार कैसा है.
When they look at you and they look at me.
जब वो आपको और मुझको देखते हैं.
Do they see a humble man?
क्या वो एक नम्र पुरुष को देखते हैं?
A prayerful man?
एक प्रार्थना पुरुष को देखते हैं?
A man who's not ashamed to shed tears with the people of God.
क्या वो एक ऐसे पुरुष को देखते हैं जो अपनी प्रजा के साथ अपने लोगों के साथ आंसुओं को बहाने के लिए तैयार है?
Do they see above all else a man who simply wants to cling to the word of God for the honor of the Lord who died to save him?
क्या वो हमको इस प्रकार से देखते हैं? हाँ, ये परमेश्वर का पुरुष है जो परमेश्वर के वचन से लगा रहता है ताकि प्रभु यीशु मसीह को सारी बातों में महिमा मिले.
You see, brethren, we could just sit today and study Daniel 70 weeks.
प्रियो, हम यहाँ बैठकर दानियल उसका 70वें अध्याय को सीख सकते हैं.
And we could say, oh yes, you know, at the end of this 490-year period, the house of the Lord was burnt.
और हम इस प्रकार से कह सकते हैं, देखो, 490 बरस पूरे हो गए, परमेश्वर का मंदिर जला दिया गया.
But it's not just a fact of history.
लेकिन ये इतिहास के कुछ सत्य या तथ्य नहीं है.
Are we starting to feel in our hearts today what it would mean in the sight of God and His people for the house of the Lord to be burned and everything in it?
क्या हम कभी सोचे हैं परमेश्वर की दृष्टि में उसका घर जलता हुआ देखना क्या ऐसे ही बात है?
And why had this judgment finally fallen?
क्या अब ये न्याय इनके ऊपर क्यों गिरा है?
Because for years they had looked at the house of the Lord and they had boasted about the shell of it, the outside of it.
क्योंकि कितने बरस वो उस मंदिर को देखते थे और उसकी शालीनता को देखकर बाहरी रूप को देखकर ढांचे को देखकर गर्व करते थे.
They had forgotten what made it the house of the Lord.
लेकिन वो इस सत्य को भूल गए कि ये परमेश्वर का मंदिर क्यों कहलाया जाता है.
The presence of God and the rule of heaven.
परमेश्वर की उपस्थिति और स्वर्ग के कानून वहां लागू होते
हैं। Are we simply boasting about assemblies?
क्या हम अपनी कलीसियाओं के बारे में सिर्फ घमंड कर रहे हैं?
And forgetting what makes them house of God?
और हम इस बात को भूल जा रहे हैं कि ये कलीसियाएं प्रभु का भवन कैसे बनती हैं?
Is it possible that we could be guilty of the same sins as the nation of Israel were?
क्या ये संभव नहीं है कि इस्राएली जिन पापों के अधीन थे, क्या हम भी वही पाप नहीं कर रहे हैं?
Yes, brethren, it's very possible.
प्रियो, ये हमारे जीवन में भी शायद संभव है।
And we should be warned today that God's patience was finally exhausted.
और इस बात को हम जान ले कि 490 वर्ष के बाद परमेश्वर का जो दीर्घ समय समाप्त हो गया।
What had God got on earth for himself?
परमेश्वर ने जिसको अपने लिए पृथ्वी पर रखा था,
His house,
उसका घर,
His people,
उसके लोग,
And God destroyed His house,
और परमेश्वर ने अपने भवन का नाश किया,
Because His people were not worthy of it,
क्योंकि उसके लोग इसके काबिल नहीं थे कि वो आए,
And He allowed Gentile feet to overrun the whole place,
और परमेश्वर ने अनुमति दी कि अन्य जाति वहां पर आकर उनके पांव उसको गंदा कर दे।
He's a God of long grace,
वो बहुत दीर्घ क्षमा से अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर,
But He's a God of government.
लेकिन वो प्रशासन चलाने वाला भी।
God isn't dealing here with his enemies.
यहाँ पर परमेश्वर अपने शत्रुओं के साथ काम नहीं कर रहा।
God is dealing with his people.
परमेश्वर अपनी प्रजा, अपने लोगों से व्यवहार कर रहा है।
And he allowed the house to be burned.
और उसने अनुमति दी कि वो घर जला दिया जाए।
Totally destroyed.
पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया जाए।
And his people went into captivity.
और प्रभु के लोग बंधुआई में चले गए।
And while his people were there, there were these young men like Daniel and Shadrach and Meshach and Abednego.
और जब वो वहां पर थे तो ऐसे बंधुआई में दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ये जवान भी वहां थे।
Men who in the midst of ruin and the captivity of God's people.
जो उस समय के इस भयंकर नष्ट के बीच में और गुलामी के बीच में प्रभु के लोगों के बीच में थे।
They turned back to the living God.
इन लोगों ने उसके बीच में से अपने जीवित परमेश्वर की ओर देखा।
They turned back to his word.
और वो अपने परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ गए।
And they found that God is a God of recovery and God is a God of revival.
उन्होंने सत्य को समझ लिया कि परमेश्वर पुनर्स्थापना करने वाला परमेश्वर है।
Brethren, he can do the same today.
प्रियो, आज भी वो हमारे बीच में भी ऐसा कर सकता है।
And he will do the same today.
और वो आज करेगा।
If there are men who are devoted to God and his word, God will use them and God will bring revival.
अगर कुछ पुरुष हैं जो उसके वचन की ओर लौट कराने के लिए तैयार है, जो अपने आप को प्रभु के सामने नम्र करने के लिए तैयार है, प्रभु आज हमारे बीच में एक जयोत्सव ले आएगा।
Amidst failure and ruin and tears,
पराजय, बिखरपन और आंसुओं के बीच में,
God revealed to a man of God, Daniel.
परमेश्वर ने अपनी प्रजा के सामने एक पुरुष को उठाकर दिखाया, दानियल।
That this was not how it was all going to finish.
लेकिन इसकी समाप्ति ऐसा नहीं होने वाला था।
And God then gave to Daniel this tremendous vision of how things were going to unfold in the years to come.
और परमेश्वर ने दानियल को ये बड़ा दृश्य दिखाया कि भविष्य में क्या क्या घटने वाली है।
The times of the Gentiles had begun.
और अन्य जातियों का समय शुरू हो गया।
Precedents in world government had been taken away from Israel and now lay in the hands of Gentiles.
और राज्यों का नेतृत्व करने का अधिकार इज़राइली के हाथ से लेकर अब अन्य जातियों को दिया गया है।
And God said, "Now listen, I'm going to be dealing here with men who are effectively in charge of the world."
और परमेश्वर ने कहा कि अब मैं उन लोगों के साथ व्यवहार करने जा रहा हूं जिनका शासन पृथ्वी पर चल रहा है।
But the king's heart is like a river of water in the hand of God.
क्योंकि परमेश्वर के हाथों में एक राजा का हृदय नदी के जल के समान है, बहते हुए जल के समान है।
He can turn it whichever way he wants.
और जिस जहां पर मोड़ना चाहता है वैसे प्रभु उनके दिलों को मोड़ता है।
Nebuchadnezzar.
नबूकदनेस्सर हो।
Belshazzar.
बेलशस्सर हो।
Cyrus.
साइरस
Darius.
Darius हो।
Artaxerxes.
और Artaxerxes हो।
All of these kings were mighty, mighty, mighty men on the face of the earth.
ये सारे राजा जो महाराज जो शासक हैं विश्व इतिहास के महान शासकों में गिने जाते हैं।
And on the throne of heaven, God was simply turning them this way and that way according to His will.
स्वर्ग के सिंहासन पर बैठकर मानव इतिहास में परमेश्वर उनके दिलों को यहाँ वहाँ मोड़ रहा था।
With our children at home, we often sing a chorus: "God is still on the throne."
हम बच्चों के साथ घर में कोरस गाते हैं। परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है।
And he will remember his own.
और वह अपनों को स्मरण करेगा।
He'll not forget you.
वो तुझे भूलेगा नहीं।
God is still on the throne.
परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान।
Praise God, he is.
प्रभु को धन्यवाद स्तुति हो हमारा परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान।
So now God is going to turn the hearts of kings to do things and he's going to control them.
इसलिए अब प्रभु राजाओं के हृदयों को शासकों के हृदय में एक बदलाव लाने वाला उन पर नियंत्रण वो रखेगा।
And Ezra the scribe with his brethren Zerubbabel Joshua
और यस्रा अपने जो जो अन्य सहभागी भाई हैं उनके साथ मिलकर
In the days of Cyrus they're going to be given permission to go back to that desolate land and rebuild the temple
और सम्राट को पूर्व के युग में उन्हें मौका दिया जाएगा कि वापस जाए और मंदिर को दोबारा बनाए
Then when the temple is rebuilt
और जब मंदिर बन जाएगा
It wasn't without its problems
और वो उसकी समस्याओं के साथ ही होगा
The work stopped for 12 years
और काम रुक गया था 12 वर्ष
Then Haggai and Zechariah came along and they prophesied
और हगाई और जकरिया आए उन्होंने भविष्यवाणी की
Eventually a new temple was built
और हम देखते हैं कि परमेश्वर का मंदिर एक नया मंदिर फिर बन गया
When the foundation of it was laid
जब उस मंदिर की नींव रखे जा रहे थे
There were old men and young men who looked at it
वहां पर बुजुर्ग लोग थे और जवान लोग थे जो उसको देख रहे थे
And the old men were old men they had been the whole 70 years in captivity but they could still remember the glory of the former house
ye buzurg log the wo gulami mein chale gaye lekin abhi bhi unko wo purane mandir ka jo gaurav hai usko uska gyan tha
and when they looked at the foundations of this new house
jab unhone us ghar ke neev ko us mandir ke naye neev ko dekha
scripture said they wept
wahan padhte hain ki wo rone lage
It wasn't going to be as great as the last house.
क्योंकि पहले मंदिर के समान ये भव्य नहीं बन रहा।
But even as the old men wept, the young men were rejoicing.
लेकिन जब वो बुजुर्ग लोग इन बातों को देखकर आंसू बहा रहे थे, तो जवान लोग आनंद मना रहे।
They had never seen the former house.
क्योंकि उन्होंने कभी भी पुराने मंदिर को देखा नहीं है।
This was all they had.
अब उनके पास यही एक मंदिर बच गया।
A new work for God.
और जब आप प्रभु के लिए सेवा करेंगे
And the tears of the old men and the joy of the young men combined as the people of God went forward
और जब बुजुर्गों की आंसू और जवानों का उत्साह जब मिल जाता है प्रभु का काम आगे बढ़ता है
Then God moved again
और वो एक साथ आगे बढ़ने लगे
And he stirred the heart of another Gentile king
और प्रभु ने दूसरे एक अन्य जाति के राजा के हृदय में काम किया
The man who had Nehemiah as his cupbearer
और जिसका कटोरा वाहक होके नहमाया था
He said one day, Nehemiah, you're looking very sad.
उस शासक ने उस महान राजा ने नहमया के चेहरे की ओर देखकर कहा तू बहुत निराश दिख रहा
Nehemiah said, How can I not look sad when so much has happened to my land and my people?
नहमया ने अपने सम्राट अपने राजा से कहा मैं कैसे दुखी ना हूं जब मैं अपने लोग अपने देश के बारे में सोचता हूं
The king said to Nehemiah, Is there anything I can do for you?
राजा ने नहमया से पूछा नहमया मैं तेरे लिए कुछ कर सकता हूं
And there was then recorded the shortest prayer in the Bible.
और वहां पर बाइबल की सबसे छोटी प्रार्थना को हम पढ़ते हैं.
Because Nehemiah said, "And I prayed to the Lord God of heaven, and I said to the king."
और नहमया ऐसा कहता है, और मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना की और राजा से कहा.
That was a man in touch with God.
देखिए वो किस पे आपको दिखाता है एक पुरुष जो परमेश्वर के साथ संबंध में था.
That was a man who had been often in the presence of God with his burden of heart.
एक पुरुष जो अपने बोझ के साथ प्रभु के सम्मुख हमेशा रहा
When the moment came, he took it.
और जब समय आया उसने उसको अपने हाथों में ले लिया
What's the matter, Nehemiah?
नहमया क्या हुआ
I prayed to the Lord.
मैंने परमेश्वर से बात किया
I said to the king,
मैंने राजा से कहा
Let me go and build.
मैं जाकर मंदिर को बनाना चाहता हूं
And the king said, "Yes, Nehemiah, you can take leave. You can go and rebuild the wall and the city of Jerusalem."
राजा ने मुझसे कहा, नहमया, मैं तुझे छुट्टी देता हूँ. जो तुझे चाहिए, लेकर जा अपने जगह पर जाकर मंदिर को.
And what that great Gentile king did not know.
और ये अन्य जाति का राजा इस सत्य को नहीं जानता था.
Was that the God of heaven was using him.
कि स्वर्ग का परमेश्वर उसका उपयोग कर रहा है
And the prophetic clock was ticking now.
और भविष्यवाणी की घड़ी बज रही है आगे बढ़ रही है
This was the start of that 490 years.
अब वे अगला 490 वर्ष की शुरुआत
From the decree to go up and rebuild the city and the wall.
राजा का आदेश जाओ और मंदिर के दीवारों को बनाओ
The clock was ticking and nothing was going to stop it.
आप देखिए ये भविष्यवाणी की घड़ी बज रही है आगे बढ़ रही है अब इसको कोई रोक नहीं सकता
Over a 49 year period
और 39 वर्ष के अंतराल में
The wall was rebuilt
दीवार बन गए खड़े हो गए
That was done amazingly quickly 57 days
और 57 दिन में वो बन गए
Gates were rebuilt
और जो द्वार हैं बड़े-बड़े लगाए गए
Streets were rebuilt
और जो सड़क है वो बनाए गए
Oh the joy of these people as they were rebuilding the city of God
और जब वो परमेश्वर के नगर को बना रहे थे लोगों के दिल के आनंद को देखिए
49 years
49 वर्ष
Then the next period of time started.
अब समय की अगला क्षण शुरू हो गया.
The next 62 weeks of years.
अगला 62 सप्ताहों का बरस.
434 years.
434 बरस.
Measured in days as well.
जिनको दिनों के में भी गिना गया है.
And as those days were completed.
और जैसे ही ये दिन समाप्त होने लगे.
Scholarly, godly men have calculated this amazing fact.
जो परमेश्वर के वचन के विद्वान हैं, उन्होंने इतिहास के पन्नों में ऐसा लिखा है.
That whole period. Of 483 years.
कि 483 बरस की जो लंबी अवधि है.
It finished on the very day that the Lord Jesus rode into Jerusalem.
वो उसी दिन समाप्त हुआ जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आए.
You see, Zechariah had prophesied.
ज़करिया ने भविष्यवाणी की थी.
In chapter 9, verse 9.
ज़करिया उसके 9 अध्याय के 9वें पद में.
Oh, thy king coming unto thee.
देखो तेरा राजा तेरे करीब आ रहा है.
He will be meek and lowly, riding upon an ass, upon a colt, the foal of an ass.
वो नम्र होगा, दीन होगा, और गधे के एक बच्चे पर सवारी करके आएगा.
And on that very day, the Lord Jesus rode into Jerusalem.
और ठीक उसी दिन प्रभु यीशु मसीह देखिए यरूशलेम में आ रहे हैं.
And people took the palm leaves and they strewed them in front of him.
और लोगों ने डालियों को बिछा दिया.
And they cried Hosanna.
और वो चिल्ला उठे Hosanna.
Seemed that they were welcoming the king.
ऐसा लग रहा था कि यरूशलेम की सारी भीड़ एक राजा को स्वीकार कर रही है.
And within just a few days, their cry turned from Hosanna to crucify him.
और कुछ दिनों के बाद जो लोग इस होसाना चिल्ला रहे थे, वो चिल्ला रहे थे इसे क्रूस पर चढ़ाओ.
And Messiah, the prince, was cut off.
और जो मसीहा जो राजकुमार है वो काट दिया गया.
Just as God told Daniel he would be.
जैसे परमेश्वर ने दानियल से कहा था जिसको हमने पढ़ा.
Absolute precision of scripture.
बिल्कुल वचन में बिना किसी फर्क के वो वैसे ही पूरा हो गया.
Messiah was cut off.
अब देखिए जो मसीहा है वो घात किया गया, अलग किया गया.
How did that period of 490 years conclude?
ये 490 बरस का काल कैसे समाप्त हुआ?
Well, the amazing thing is, it has not concluded.
कि इसमें की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये अभी तक समाप्त नहीं हुआ.
Because what Daniel did not know.
क्योंकि दानियल को जो चीज नहीं मालूम था.
Was that from Messiah being cut off.
मसीहा के घात किए जाने के बाद.
To that last group of 7 years.
और जो 7 बरस का अंतिम अंतराल है.
It was going to be the whole of the church age.
वो युग में कलीसिया का निर्माण होगा.
Mind you, judgment came.
देखिए न्याय आया परमेश्वर का.
Judgment came at Calvary.
और न्याय कालवरी के क्रूस पर आया.
That's where the Lord Jesus Christ died to be the savior of sinners.
वहां पर मसीह यीशु पापियों का उद्धार करता होकर मर गया.
That's where divine judgment fell upon a sinless substitute.
वो ऐसा एक स्थान था जहां पर बदले में चढ़े हुए के ऊपर जो पाप रहित था परमेश्वर का न्याय.
Oh brethren, let us lift our hearts today and bless God for Calvary.
प्रियो आज अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे कालवरी के क्रूस को याद करते हुए.
Oh the love that drew salvation's plan.
देखो उद्धार के उद्धार में ले आने वाले उस प्रेम को देखो.
Oh the grace that brought it down to man.
वो देखो उस अनुग्रह को जो उस उद्धार को मनुष्य के पास लेकर आया.
Oh the mighty gulf that God did span.
वो देखो वो कितनी बड़ी दूरी थी जिसको सवार करके प्रभु आया.
At Calvary.
वो कालवरी है.
Later John in his vision would say of Jerusalem.
बाद में यूहन्ना अपने दर्शन में यरूशलेम से के बारे में कहता है.
The place that should have been the center of divine administration upon earth.
यरूशलेम वो स्थान जहां पर परमेश्वर का ईश्वरीय प्रशासन चलना था.
Jerusalem which spiritually is called Sodom and Egypt.
और जिसको स्पिरिचुअल आत्मिक रूप से यरूशलेम को मिस्र में सदोम करके कहा गया.
Where also our Lord was crucified.
एक वैसा स्थान जहां पर हमारे प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया गया.
That city and that temple was going to be destroyed again.
वो मंदिर और वो शहर का फिर से नाश होना जरूरी था.
And in AD 70 under Titus the Roman ruler the whole place was destroyed and brought down to the ground.
और आपको मालूम है इतिहास के पन्नों में लिखा है AD 70 में रोम के सम्राट ने उस नगर को बिल्कुल तहस नहस कर दिया, मंदिर को तहस नहस कर दिया.
There was a temple city in Genesis chapter 11 remember.
उत्पत्ति के 11वें अध्याय में एक मंदिर से वाला एक शहर था.
God destroyed it.
परमेश्वर ने उस मंदिर के शहर को नष्ट कर दिया.
There was a temple city at the end of those 490 years.
490 बरस के अंत में एक और मंदिर का शहर था.
God destroyed it.
परमेश्वर ने उसको नाश किया.
There was a temple city where the Lord was crucified.
और जब प्रभु जहां प्रभु यीशु मसीह की ओर क्रूस पर चढ़ा गया वो भी एक मंदिर का शहर था.
God destroyed it.
परमेश्वर ने उसका भी नाश कर दिया.
And in that next group of 7 years, which is still future,
अभी भविष्य में जो 7 बरस आने वाले हैं,
Israel in unbelief will rebuild another temple.
इसराइल अविश्वास के द्वारा एक और मंदिर का निर्माण करने जा रहा है.
It will have an idol in the middle of it eventually.
और अंत में उस मंदिर के बीच में एक मूर्ति होगी.
Another temple city.
एक और मंदिर का नगर होगा वो.
God's going to destroy it.
और परमेश्वर फिर उसको नाश करेगा.
Why?
क्यों?
Because God has one temple city in mind.
क्योंकि परमेश्वर के मन में एक मंदिर का शहर है.
Zion, beautiful for situation.
ओ, उसका नाम सियोन है जो सुंदर स्थानों में स्थित है.
The city of the great king.
वो महान राजा का शहर है.
The millennial throne center of the Lord Jesus Christ.
और वो 1000 बरस के राज्य में प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन को स्थापित करने वाला भाग होगा.
And that's where that next week is going to take us up to.
और ये जो सप्ताह है जो अंतिम सप्ताह है हमें उस 1000 बरस के राज्य में लेकर जाएगा.
The last 7 years of Daniel's prophecy have still to run their course.
दानियल की भविष्यवाणी के अंतिम 7 साल अभी पूरा नहीं हुए.
Years when God takes up his dealings again with the nation of Israel.
और जब प्रभु अपनी प्रजा इसराइल के साथ अपनी बातों को पूरा करेगा.
Divided into 2 halves.
प्रभु ने उसे 2 भागों में विभाजित किया.
The first half, the beginning of sorrows.
पहला भाग दुख से भरा हुआ था.
The second half, the great tribulation.
और दूसरा भाग महापीड़ा काल.
The time of Jacob's trouble.
और याकूब के कष्ट के दिन.
An important event in the midst of the week.
और सप्ताह के बीच में एक महत्वपूर्ण विषय होने वाला.
These things you have on the chart for your own study.
इन बातों को आपके स्वयं अध्ययन के लिए चार्ट पर आप देख सकते हैं.
How can there be a shadow of doubt that these things are going to happen?
और बिना शक के हम कैसे कह सकते हैं कि ये सारी बातें अब पूरी होगी फिर से.
When the other 69 weeks have been fulfilled to the very letter.
प्रियो अगर पिछला 69 बरस की घटनाएं वचन में बाइबल में जैसे भविष्यवाणी की गई ऐसा पूरा हुआ है.
God is still in control.
अभी भी परमेश्वर पृथ्वी पर नियंत्रण रखा हुआ है.
And in those 7 years.
और आपको मालूम है वो 7 बरस.
He is going to bring his people to repentance.
वो अपने लोगों को पश्चाताप में ले आएगा मन फिराव में ले आएगा.
That is the purpose of the great tribulation.
ये महाक्लेश काल का को परमेश्वर ने इसीलिए नियुक्त किया है.
It's not divine punishment of Israel.
ये इसराइल के ऊपर परमेश्वर का जो सजा नहीं है.
It's divine correction of them.
ये परमेश्वर उनमें ईश्वरीय सुधार ले आ रहा है.
And he is going to use the agency of Gentile nations.
और परमेश्वर इस काम को उनके जीवन में पूरा करने के लिए अन्य जातियों के देशों को उपयोग करेगा.
To drive his unfaithful wife in repentance back into his arms.
ये वो पत्नी जो विश्वास योग्य विश्वासहीनता के द्वारा उससे दूर चली गई थी उसकी बाहों में फिर आ जाए.
Generally speaking, the time they spent in Babylon cured them of their idolatry.
वास्तविक रूप से अगर हम देखेंगे तो बाबुल में जब वो लोग थे उन्होंने मूर्ति पूजा को पूर्ण रूप से छोड़ दिया.
But it's only to find that when the temple they rebuild is set up, that in the midst of the week a monstrous idol is put up in the temple.
और हम जानते हैं कि जब वो जो वो मंदिर बनाया गया था वहां पर हम कई मूर्तियों को देखते हैं.
The Lord spoke of a house that had demons in it.
और परमेश्वर ने घर के बारे में कहा कि वहां पे दुष्ट आत्माएं थी.
And then it was swept and garnished.
और उसको साफ किया गया.
Those demons were cleaned out.
और वो दुष्ट आत्माओं को वहां से निकाला गया.
It was a picture of what happened to Israel in the Babylonian captivity.
बाबिलोन में इसराइलियों के जीवन में क्या हुआ उसका एक दृष्टांत था वो.
But instead of the house being refilled with the glory of the Lord.
लेकिन परमेश्वर का मंदिर परमेश्वर का भवन परमेश्वर की महिमा से भरपूर हो जाए ये छोड़कर.
They left it empty.
उन्होंने इस मंदिर को खाली छोड़ा.
And far worse demon came in and brought many others like him with him.
और हम पढ़ते हैं कि और बहुत सी दुष्टात्माएं वहां आ गई और वो भर गया.
Yes, Israel turned away from their idols because of the Babylonian captivity.
जी हाँ बाबुल की उनकी बेदारी के कारण बदुआई के कारण इसराइली मूर्ति पूजा से दूर हो गए.
But they didn't turn back with a whole heart to the Lord their God.
लेकिन वो संपूर्ण हृदय से जीवित परमेश्वर की ओर नहीं आए.
A little while ago I was on a train in the UK.
कुछ दिनों के पहले मैं यूके में एक ट्रेन में सफर कर रहा था.
And sitting opposite me we would have 2 seats here and then a table and then 2 seats there.
वहां पर हमारे कुछ ट्रेनों में 2 सीट ये बाजू में होती है 2 सीट दूसरे बाजू में और बीच में एक टेबल होती है.
There was a man sitting there and he was reading the Old Testament scriptures.
वहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था और ट्रेन में पुराने नियम के भागों को पढ़ा।
I could tell he was a Jew.
और मुझे मालूम है, मैं बता देना चाहता हूँ, वो एक यहूदी था।
As he looked up, I was waiting. I looked him in the eye.
जैसे उसने अपनी दृष्टि शास्त्र से उठाकर मुझे देखा, मैं उसकी और इंतजार के साथ बैठा हुआ था।
I said to him, "Understandest thou what thou readest?"
मैंने उनसे ऐसा सवाल किया, जो आप पढ़ रहे हैं क्या उसे तुम समझते हो?
I said, "Pardon?"
उसने कहा, माफ करे?
I said, "That's all right. I'm just quoting the words of my namesake. My name is Philip, and there was a man in the Bible called Philip, and he was speaking to a Jew, and he asked him the same thing."
मैंने उनसे कहा कि मेरे ही नाम का एक पुरुष है बाइबल में, उसने यही शब्द एक यहूदी से बात करते हुए कहा था, इसलिए मैं उन्हीं शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ।
I said, "You're reading the scriptures. Do you understand them?"
मैंने उनसे पूछा कि आप शास्त्र को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र, क्या आपको समझ में आ रहा है?
He said, "I think I do."
उसने कहा कि मुझे लगता है मुझे समझ में आ रहा है।
I said, "Are you a teacher of these things?"
मैंने उनसे पूछा, क्या आपकी शिक्षा, आप इन बातों की शिक्षा दूसरों को देते हैं?
Well, he said, "I do. I teach these things, and my father is the chief rabbi in a synagogue in London."
उन्होंने कहा कि मैं इन बातों की शिक्षा देता हूँ, मेरे पिता लंदन में एक सिनेगॉग है जहां यहूदी इकट्ठा होते हैं आराधना के लिए, उसके प्रधान रब्बी हैं।
I said, "Tell me about your Messiah. Tell me about your Messiah."
मैंने उनसे कहा कि आप अपने मसीहा के बारे में कुछ मुझे बताएंगे?
I think you're still waiting for him.
मैं विश्वास करता हूं कि आप उसका इंतजार में हैं।
Yes, he said, "We are."
उन्होंने कहा कि हाँ, मैं अपनी मसीहा के इंतजार में हूं।
I said, "Tell me about him."
मैंने कहा कि आप अपने मसीहा के बारे में कुछ बता सकते
हैं? He said to me, and it amazed me.
उन्होंने मुझसे कुछ कहा जो मुझे आश्चर्यचकित कर दिया।
He said, "Why are you referring to Messiah as him?"
उसने मुझसे कहा कि तुम मसीहा को वह कहकर क्यों कह रहे हो, him?
I said, "Well, you're waiting for a man, aren't you?"
मैंने उनसे कहा कि आप एक व्यक्ति के इंतजार में हैं।
Oh no, he said, no.
उसने कहा, नहीं, एक पुरुष के इंतजार में नहीं है।
No, he said, "Israel has got problems at the moment with peace and security."
उसने कहा कि नहीं, इसराइल को अपनी सुरक्षा और शांति के संदर्भ में कुछ समस्याएं हैं।
But when those problems are dealt with, when we've got a good peace settlement that we can rest upon,
और जब हमारे शांति संधि हो जाएगी और सब जगह आराम और शांति होगी,
then he said, "Our Israeli doctors and technicians and scientists will prove to the world what a wonderful nation we are."
तब हम जो इसराइली हैं, हमारे डॉक्टर्स, हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर्स पूरी संसार को साबित कर देंगे कि हम कितने महान लोग हैं।
We will have the best nation state in the world.
हम सारे विश्व में सबसे उत्तम देश बन जाएंगे।
No poverty.
हमारे यहाँ भूख नहीं होगी।
We will be world leaders in everything.
हम हर बातों में विश्व में प्रथम स्थान रखेंगे।
He said, "That for us is Messiah."
उसने कहा कि वो ही हमारे लिए मसीहा है।
A condition of things.
देखिए, लोगों का अवस्था कैसा है।
And you know, I could feel a thrill go through my body because that's exactly how the nation will be after the rapture.
आपको मैं बता दूं, जब ये बात उसने मुझसे कहा, मेरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि जब कलीसिया उठा ली जाएगी, विश्वासी उठा लिए जाएंगे, इसराइल एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाएगा।
And in those 7 years that follow that, The nation as a whole, they're not going to be looking for a man.
और जो 7 बरस हो जाएंगे, तब लोग ऐसे एक मनुष्य को नहीं देखेंगे, देखना चाहेंगे।
They're looking for peace and security, and the beast will give it to them.
और वो शांति और सुख को देखेंगे, और मैंने जो पशु के बारे में कहा था, वो उसे वो देने वाला।
They're looking for a temple, they'll rebuild it, but the glory of the Lord won't be there.
वो लोग वो मंदिर को दोबारा बनाना चाहते हैं, और वो उसको बनाएंगे।
And for them it will be Messiah.
और वो उनके लिए मसीहा होगा।
Until suddenly in the middle of the week. It will all be cut off.
अचानक सप्ताह के बीच में सब कुछ घात किया जाएगा, हट जाएगा।
And there will be a faithful remnant who will turn back to the Bible.
और उन लोगों के, इसराइलियों के बीच में से एक छोटा सा झुंड होगा जो पवित्र शास्त्र की ओर मुड़कर आएगा।
And they'll know that Messiah is a man.
और वो उनको इस बात का ज्ञान होगा कि उनका मसीहा जीवित है।
And at the end of the great tribulation, when it seems that the nation must be exterminated.
और वो महाक्लेश काल के अंत में जब ऐसा लगेगा कि इसराइल देश का संपूर्ण नाश होने जा रहा है।
And finally, in genuine repentance and humility, they cry to their God to deliver them.
और अंत में ऐसा क्षण हो जाएगा कि वो अपने आप को परमेश्वर के सामने गिरा देंगे, गिड़गिड़ाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे।
The heavens will open.
अचानक स्वर्ग खुल जाएंगी।
The Messiah will come.
और उनका मसीहा उनके बीच में उतर कर आएगा।
They'll realize he is a man.
और उसको देखकर वो समझ जाएंगे, अरे वो तो एक मनुष्य।
But brethren, they'll realize that he's that man.
और वो समझ जाएंगे कि वो पुरुष है।
He's the man we crucified.
अरे वो तो वो है जिसको हमने क्रूस पर चढ़ाया था।
Then the nation will confess, but he was wounded for our transgressions.
और तब सारे इसराइली एक साथ कहेंगे कि वो हमारे घावों के लिए घात के हमारे बुराई पापों के लिए घात किया गया था.
He was bruised for our iniquities.
वो हमारे अधर्मों के लिए वो तोड़ा गया था.
The punishment of God with a view to our peace was upon him.
और परमेश्वर का जो न्याय जो हमारे शांति के लिए जो हमारे ऊपर आना था उसके ऊपर आया.
With his stripes we are healed.
और उसके घावों के द्वारा हम चंगे हो गए.
Zechariah says they will look upon him whom they pierced.
ज़करिया कहता है कि वो उनको देखेंगे जिसको उन्होंने बेधा था.
And they will mourn for him as a woman mourns for her only son.
और उसको देखकर जैसा एक मां अपने इकलौते बेटे के लिए रोती है ऐसा वो रोएंगे.
What a glorious day that will be.
वो कितना महान दिन होगा.
When the true Messiah of Israel comes to deliver them.
जब सच्चा मसीहा जो इसराइल का उनको छुड़ाने के लिए आएगा.
At the end of Daniel's 70 weeks of years.
दानियल के 70 सप्ताहों के वर्ष का अंत जब होगा.
We trust that the Lord will bless his word.
और मैं आशा करता हूं कि ये वचन आपके जीवन में आशीष से भर दे.
Amen.